ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग यहां पर जितने भी संस्कार हमने किए थे, उन 16 संस्कारों में से जो महत्वपूर्ण कुछ संस्कार हमने अभी तक किए हैं, गर्भाधान संस्कार से लेकर के कर्ण भेदन संस्कार तक, ये दोष निवृत्ति के संस्कार हैं। और उसके आगे जो विद्यारंभ संस्कार से लेकर के अंतिम संस्कार हैं, ये गुण भरने वाले संस्कार हैं। तो आज से हम लोग जो गुण भरने वाले संस्कार हैं, विद्यारंभ संस्कार से लेकर के अंतिम संस्कार या कर्ण भेदन संस्कार को भी गुण भरने वाले संस्कार कहा जाता है। तो समाज में हम लोग ने अभी तक दोष निकाले हैं, लेकिन अब हम लोग गुण भर रहे हैं। मैं वो उदाहरण दे रहा था कि जैसे मोबाइल में एक्स्ट्रा माइक्रोचिप लगाया जाता है ताकि उसमें एक अलग से स्पेस मिले और हम उसमें ज्यादा से ज्यादा अपने मीडियास के जो ऑडियो वीडियो होते हैं उसको ज्यादा डाल करके यूज कर सकते हैं। उसी प्रकार अभी तक तो हमने दोष निकाले बालक के अंदर से, अब उसके अंदर हम गुण भरना प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो गुणों में पहला आता है विद्यारंभ संस्कार, फिर आता है उपनयन संस्कार। यह जो उपनयन संस्कार है इसमें गुण भरा जाता है बालक के अंदर। तो इनके अंदर एक्स्ट्रा गुण भर दिया जाता है, उनके जीवन काल में हर प्रकार का अच्छे अच्छे गुणों का निर्माण कराया जाता है, उसके लिए उपनयन संस्कार जो है वो हम लोग करते हैं। तो अब हम लोग यहां पर चर्चा करने जा रहे हैं उपनयन संस्कार कर। यह जो उपनयन संस्कार है इसको कई प्रकार के नाम दिए गए हैं। उपनयन संस्कार ये नाम से विख्यात है, कोई इसे यज्ञोपवीत संस्कार कहता है, कोई जनेऊ संस्कार कहता है और कोई मुंज संस्कार कहता है। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है उपनयन। ये शब्द को आप ध्यान पूर्वक देखेंगे, उपनयन। उपनयन का अर्थ होता है कि उप मतलब होता है निकट और नयन का अर्थ होता है ले जाना। तो उपनयन संस्कार का मुख्य अर्थ होता है, उप का अर्थ होता है पास और नयन का अर्थ होता है ले जाना। तो उपनयन का अर्थ होता है उसे किसी आचार्य या गुरु के पास ले जाया जाए और उसके अंदर गुण और शिक्षा भरा जाए, इसके लिए उसे उपनयन संस्कार कहते हैं। उपनयन संस्कार का और भी अर्थ होता है कि उपनयन मतलब कि सबसे पहले बालक को अच्छे अच्छे गुण भरा जाए, यानी बच्चे को अभी तक उसका जो 5 या 8 वर्ष की आयु तक उसके अंदर केवल अशुद्धियां थी, अब उन अशुद्धियों से उसे दूर करके उसके अंदर गुण भरने के लिए उसे सबसे पहले गुरु के पास यानी ब्राह्मण या गुरु के पास ले जाया जाता है। वह गुरु के पास उसे शिक्षा दीक्षा दे करके उसे वेदों का अध्ययन कराया जाता है, यानी गुरु बालक को पहले गुरु के पास ले जाया जाता है, गुरु उसे शास्त्र, गुरु और शिष्य दोनों मिलकर के शास्त्र के पास जाते हैं, यानी एक दूसरे को शास्त्र का अध्ययन करते कराते हैं और शास्त्र उसे ब्रह्म यानी भगवान के पास लेकर के जाते हैं। तो इसका अर्थ कैसा है, यानी पहले गुरु के पास ले जाते हैं, गुरु से वेदों के पास शास्त्रों के पास लेकर के जाते हैं और शास्त्रों के द्वारा उसे भगवान के पास ले जाया जाता है। इसलिए ये जो उपनयन संस्कार है ये उसे ऊपर उठा करके बहुत आगे ले जाने के लिए ये संस्कार किया जाता है। इसी से वास्तव में अभी तक हम लोग जो द्विज संस्कार कहते हैं, वो द्विज संस्कार तो बालक का जन्म से जब नामकरण गर्भाधान में ये सारे जो संस्कार हो रहे थे उनसे हम उसे द्विज कहते हैं, लेकिन वास्तविक द्विज का शब्द का अर्थ यहां पर आ रहा है और वो है उपनयन संस्कार। क्योंकि अब इसके अंदर पूर्ण रूप से गुण भरे जाएंगे। अभी तक जो संस्कार किए हमने वो दोष निकालने के लिए, लेकिन ये जो संस्कार कर रहे हैं इसके माध्यम से हम गुण भर रहे हैं, गुणों का संस्कार कर रहे हैं, इसलिए इसे उपनयन संस्कार कहते हैं। तो उपनयन संस्कार जो है ये वेदों का अध्ययन करने के लिए, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए इसे जनेऊ को प्रदान किया जाता है। तो उपनयन जो होता है वो जो है वो सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्रों में कई कई स्थानों पर ऐसा बताया गया है, सदोपवीतानि भव्यं सदा बद्ध शिखेन च विशिखो व्यपतीतश्च यत् करोति न संशयः। कात्यायन स्मृति में कहा गया है कि सदैव धारण करने वाला यज्ञोपवीत और शिखा में ग्रंथि बांध के रखना चाहिए, और शिखा सूत्र विहीन व्यक्ति जो धर्म या कर्म करता है वह निष्फल हो जाता है। यानी हमारे शास्त्रों में स्मृतियों में कहा गया है जिस व्यक्ति के शरीर पर जनेऊ नहीं है, जिसके मस्तक पर शिखा नहीं है, ऐसे ऐसे व्यक्तियों का जो धर्म कर्म यज्ञ दान तपस्या जो है वो व्यर्थ चला जाता है। इसीलिए यज्ञ पवित के बिना कोई भी संस्कार नहीं किया जा सकता, या यज्ञोपवीत धारण किए बिना कोई भी वेद मंत्रों का अधिकारी नहीं होता। जो हम यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं या यज्ञोपवीत संस्कार से ही हम वेदों के मंत्रों के अधिकारी बनते हैं। अब हम वेद मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, तभी हमें शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त, वास्तविक रूप से ज्ञान प्राप्त होता है, और तभी हमें हर प्रकार की स्मृति और शक्ति का विशेष शक्ति प्राप्त होती है। क्योंकि जो गायत्री है वो गायत्री ही हमें वो ऊर्जा वो शक्ति प्रदान करती है जिसके माध्यम से हमारे जीवन में उन्नति होता है। तो ये उपनयन संस्कार कब कब करने चाहिए या किस समय किया जा सकता है या कब तक किया जा सकता है, इसके ऊपर थोड़ा विचार करते हैं। उपनयन संस्कार जो है बालक के, वह जो है उपनयन, उसे 5 वर्ष की आयु से लेकर के 8 वर्ष की आयु तक सबसे उत्तम माना गया है। और 8 वर्ष से भी यदि आगे चला जाए तो 16 वर्ष की आयु तक उपनयन संस्कार कर देना चाहिए। 8 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष की आयु भी उत्तम मानी गई है। इसमें भी विचार है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनको जो उपनयन संस्कार कराए जाते हैं, यदि कोई अपने जात के हिसाब से, कुछ लोग अपने कुल के हिसाब से भी करते हैं उपनयन संस्कार, तो उनके लिए पहले जो ब्राह्मण होते हैं उनके लिए 8 वर्ष का समय बताया गया है, जो क्षत्रिय होते हैं उनके लिए 11 वर्ष का समय बताया गया है, और जो वैश्य होते हैं उनके लिए 12 वर्ष का समय बताया गया है। लेकिन मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि हम लोग, जो भी व्यक्ति जन्म लेता है वो शूद्र है, जो संस्कार करता है वही द्विज है या वही ब्राह्मण है। तो हम सभी वैष्णव परंपरा को जो पालन करते हैं उसमें हर वैष्णव जो है वो ब्राह्मण ही है। तो उसे कोई कहेगा कि भाई प्रभु जी हमारे यहाँ तो हम इस कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो क्या हम अपने बच्चे का उपनयन संस्कार हमें कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, तो उसमें ऐसा है कि यदि आप 4 नियम का पालन करते हैं, घर में जप करते हैं, अर्च विग्रह की सेवा करते हैं, तिलक धारण करते हैं, कंठी तुलसी माला पे जप करते हैं, शिखा धारण करते हैं, तो आपको अपने बालक का उपनयन संस्कार कराने में किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। जो लोग इन सब नियमों का पालन नहीं करते उन लोगों के बच्चों का हम उपनयन संस्कार नहीं करते, लेकिन जिसके माता पिता, यदि उनका भले उपनयन संस्कार न हुआ हो लेकिन वो चाहते हैं कि उनके बच्चों के उपनयन संस्कार हो, तो वे लोग करा सकते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ नियम है, किसी का भी डायरेक्ट उपनयन संस्कार नहीं किया जा सकता। डायरेक्ट उपनयन संस्कार करने के लिए हमें बच्चों को बहुत सारी शिक्षाएं पहले उसके अंदर देनी होती है, क्योंकि आजकल का जो हमारा समय है, इन समय में बच्चों के ऊपर वो जो शिक्षाएं भरना, उनको गायत्री देना, इस प्रकार से ये संभव नहीं, इतना सरल नहीं है। तो माता पिता का वहां पर जुड़ना, माता पिता के साथ अच्छे से उनके अंदर संस्कार भर जाए, उनके अंदर गुण भर जाए, इसके लिए बच्चों को पहले देखा जाता है। हरे कृष्ण। तो बच्चों के अंदर अच्छे गुण भरे जाए, बच्चों के अंदर अच्छी शिक्षा दी जाए, इन सभी को आधार रख करके ही किसी बच्चे का उपनयन संस्कार कराया जा सकता है। यानी बालक जो होता है, बच्चा जो होता है, वो कम से कम इस नियम का पालन करने के लिए तैयार हो, वो कहे कि हाँ मैं करना चाहता हूँ, तभी हम उसका उपनयन संस्कार कर सकते हैं। जैसे हमारे माता पिता की इच्छा हो सकती है, हरे कृष्णा, माता पिता की यदि इच्छा होती है कभी कभी कि हमारे बच्चों का उपनयन संस्कार किया जाए, लेकिन जो बालक होते हैं वे तैयार नहीं होते उपनयन संस्कार करने के लिए, तो इसलिए उनके अंदर अच्छी शिक्षाओं को पहले आपको भरना है, अच्छी शिक्षाओं के बाद में उसी के साथ साथ उनके अंदर गुण भरना है, तभी यदि वो आचार्य चाहेंगे तो आपके बालक का उपनयन संस्कार किया जा सकता है। तो बालकों में माता पिता का काफी ज्यादा कंट्रोल होता है उस समय, खासकर 8 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष की आयु तक तो बालक उनके हाथ में ही होता है। तो इसके लिए यदि वो उसको उसी समय शिक्षा दें, उसको थोड़ा कठोरता से उसको पालन कराने के लिए थोड़ा उसके पीछे पड़ना पड़ेगा बच्चे के, तो वो धीरे धीरे वो संस्कार को फॉलो करने लगता है, उसके पीछे प्रयास करता है और एक समय आदत बन जाती है, फिर वो उस नियम का पालन करता है। तो इसीलिए जो बच्चे हैं उनका यदि उपनयन संस्कार करना है तो 8 वर्ष से 16 वर्ष की आयु तक उपनयन संस्कार कराया जा सकता है। इसके आगे भी विचार है, यदि कुछ लोगों का 16 वर्ष की आयु तक भी उपनयन संस्कार नहीं हुआ है तो भी वो 24 वर्ष की आयु तक उपनयन संस्कार कर सकते हैं, विवाह होने के पहले तक। यदि विवाह होने के बाद भी कुछ लोगों में अगर ऐसी भावनाएं बनती हैं कि भाई हम तैयार हैं, हमें उपनयन दीजिए और हम इनका नियम पूर्ण रूप से पालन करेंगे, तो उसके लिए भी शास्त्रों में अनेकों स्थान पे विधान बताया गया है। लेकिन अंतिम समय में ये सोचना कि भाई अब मेरा उपनयन हो जाए, जब वो 40-45 साल का हो चुका है, तो ये बात ठीक नहीं है। तो उसे गुरु या आचार्य के द्वारा वो उपनयन संस्कार ले सकता है, यानी कोई शास्त्र गुरु जो सन्यासी है, बहुत बड़ा कोई गुरु आचार्य है, वो यदि चाहे तो उनको वो उपनयन दे सकते हैं, अन्यथा उसे उपनयन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसने जीवन के आधा समय तो बिता दिया है। अभी मैं उपनयन संस्कार का जो विस्तार से चर्चा करूंगा, खासकर जो बालक को क्या क्या वस्तुएं दी जाती हैं, तो उससे आपको समझेगा कि इसलिए क्यों कम आयु में करना आवश्यक है। क्योंकि अगर आप विवाह के बाद उपनयन संस्कार कराते हैं तो उसके नियम काफी बड़े हो जाते हैं और वो पालन करना संभव नहीं होता, इसलिए कम से कम विवाह के पहले तो उपनयन संस्कार कर देना चाहिए। लेकिन आजकल उपनयन संस्कार केवल प्रथा मात्र रह गई है, तो उस प्रथा को प्रथा न समझ करके उस उपनयन संस्कार को नियम से पालन करना या कराना चाहिए। वैसे तो उपनयन संस्कार का मुख्य अर्थ ये भी है कि बालक को उसी समय उपनयन संस्कार करने के बाद ठीक दूसरे दिन से उसे गुरुकुल भेज देना चाहिए। लेकिन अब हमारे बालक गुरुकुल जाए या नहीं जाए, या हम भेज पाएंगे या नहीं भेज पाएंगे, ये सब में थोड़ी संभावनाएं हैं, या इनमें काफी विचार हैं कि वो वहां रहेगा या हम उसे भेज पाएंगे या ऐसा गुरुकुल हमें मिल पाए, इन सभी में काफी सारे प्रश्न रह जाते हैं। तो इसलिए उपनयन जो संस्कार है वो बालक की बुद्धि पे और माता पिता के ऊपर निर्भर करता है। ये हर बालक को कराना चाहिए, खासकर हम जो सभी जो भक्त हैं, वैष्णव हैं, उन लोगों के जो बालक हैं उनको ज्ञान की गति में और आगे लेकर के जाना ही ये उपनयन संस्कार ही सबसे बड़ा कार्य करता है। तो हम आगे विषय पे चर्चा करते हैं। कि उपनयन संस्कार में जो जनेऊ धारण कराना चाहिए, उपनयन का मतलब होता है जनेऊ, यानी इस प्रकार से जो मुंज धारण हम लोग करते हैं अपने समय के अनुसार, इस प्रकार से जनेऊ पहनना चाहिए बालक को। तो वो जनेऊ कैसे पहनाया जाता है, बाएं कंधे से, लेफ्ट शोल्डर से राइट की तरफ उसे उपनयन पहनाया जाता है। तो जो बालक होता है वो लेफ्ट शोल्डर से राइट शोल्डर के ओर जो उपनयन पहनता है, उसमें वो उसका जो हृदय होता है, दिल, हार्ट, वो उसको स्पर्श करता रहता है, नित्य स्पर्श करता रहता है। तो इसका स्पर्श करने का अर्थ क्या है कि तुम सदैव ब्रह्म को स्मरण करते रहो, तुम सदैव वेदों का अध्ययन करते रहो। क्योंकि उपनयन का एक दूसरा अर्थ ये भी है कि जब हम कहते हैं कि वो द्विज बन गया, तो द्विज का अर्थ होता है कि जो वेद होते हैं वो उसके पिता होते हैं, और जो गायत्री मंत्र दिया जाता है वो उसकी माता होती है। यानी अब उसके माता पिता कौन है, गायत्री माँ और वेदाध्ययन, ये उसके माता पिता हो जाते हैं। इसलिए उसके दूसरे माता पिता हो गए हैं, इसलिए भी उसको द्विज कह सकते हैं। तो जब उसको गायत्री का जप करना और नित्य गायत्री के साथ में उसके साथ उसको वेदों का अध्ययन कराना, शास्त्रों का अध्ययन कराना, ये कार्य चालू होता है, तो उसका उपनयन संस्कार के माध्यम से उसके अंदर शक्ति की प्राप्ति होती है। तो इसलिए यह जो उपनयन संस्कार है, इसमें हम लोग उसके धागों के विषय में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो उपनयन संस्कार है, इसके जो 9 धागे हैं इनके ऊपर बताया गया है। क्षमा कीजिए, मैंने वो जो फोटो है उसके ऊपर तो नहीं कर पाया हूं, खैर मैं आपको दिखा देता हूं एक फोटो के माध्यम से, आपको थोड़ा समझ जाएगा। तो ये इस प्रकार से आचार्य जो होता है वो शिष्य को जनेऊ मुंज धारण कराता है। तो यह जो मुंज है, इस प्रकार से धारण कराने से उसके हृदय से वो स्पर्श करता है। तो खैर, हम जो धागे बताए गए हैं, 3 धागे होते हैं बचपन में, बालक को पहले 3 धागों का जनेऊ दिया जाता है। वो 3 धागे, 3 स्वरूप इस प्रकार हैं। पहला है देव ऋण, दूसरा है ऋषि ऋण और तीसरा है पितृ ऋण। इन 3 ऋणों से उऋण होने के लिए ये उसे उपनयन दिया जाता है। 3 ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, इन 3 ऋणों से उऋण होने के लिए, यानी जब हम हमारा जन्म होता है, हम लोग 3 कर्ज लेकर के जन्म लेते हैं, 3 ऋण होते हैं हमारे ऊपर। तो देवताओं का ऋण कैसे पूरा होता है, जब हम यज्ञ इत्यादि करते हैं। ऋषियों का ऋण कब पूरा होता है, जब हम वेदों का अध्ययन करके समाज को वो ज्ञान देते हैं, और साथ ही साथ हम दान करना, ब्राह्मणों की, सन्यासियों की, ऋषियों की सेवा करना, इससे ऋषि ऋण उऋण होते हैं। और पितृ ऋण से भी मुक्त होते हैं, कब, जब हम विवाह संस्कार इत्यादि करके बच्चों को जन्म देते हैं तो पितृ ऋण से मुक्त होते हैं। तो 3 ऋण को से उऋण होने के लिए ये उपनयन संस्कार दिया जाता है। और गायत्री जो शब्द होता है उसका अर्थ होता है गाय, यानी होता है गाय, यानी होता है बताना, यानी गाय का अर्थ होता है बताना, और त्री का अर्थ होता है वेदों का अध्ययन कराना या वेद के पास पहुंचाना या वेद उसके आगे प्रकट हो जाए, 3 वेद, त्री यानी उसे 3 वेदों की प्राप्ति हो जाए। यानी जो गायत्री की जा रही है, जिस बालक को दिया जाता है, वो उस गायत्री के द्वारा उसे वेदों का अपने आप हृदय में प्राकट्य होता है। क्योंकि हम जो शिक्षाएं लेते हैं या गुरु के आधार से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो उनके हृदय से बालक के हृदय में प्रवेश करता है। हम जो शाब्दिक अर्थ पढ़ते हैं या जो शब्दों को पढ़ते हैं या लिखते हैं, ये ज्ञान औपचारिक रूप से होता है, यानी ऊपरी तौर पे हमें जो हमारी बुद्धि को समझ जाए, क्योंकि हमारी बुद्धि भी मंद है इसलिए लिखावट की विधि बनाई गई। लेकिन इसके पहले केवल स्मृति के द्वारा, स्मृति यानी केवल सुन करके वो याद कर लेते थे, जिसको श्रुतिधर कहते थे। श्रुतिधर अर्थात जो सुन लिया उसे ही गायत्री की प्राप्ति हो जाती है, वेदों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, सुन के स्मरण कर लेते हैं, यानी उन्हें याद रह जाता है। जैसे हम नोटबुक पर लिख करके उसे रख देते हैं, तो जीवन में कभी भी 10 वर्ष के बाद भी यदि नोटबुक खोलेंगे तो हम देखेंगे कि वो शब्द वहां लिखा हुआ है। उसी प्रकार जब वो उस समय जब सुनते थे तो उनके उन्हें वैसा ही एज इट इज याद रहता था, इसलिए उन्हें श्रुतिधर कहा जाता था। तो आज के समय हम लोग श्रुतिधर कुछ कुछ मामले में है, हर चीजों में नहीं है, इसलिए हमें ये कहना कि हम भी श्रुतिधर हैं थोड़ा कठिन है। तो श्रुतिधर का और ये जो वेदों का गायत्री का, इसका कब से प्रारंभ हुआ है? जब से सूर्य है तब से गायत्री है, जब से ब्रह्मा है तब से ये गायत्री मंत्र है। इसलिए जो हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, ये गायत्री मंत्र हमारे ऋषियों के द्वारा और बहुत पूर्व से दिया गया है, ब्रह्मा जी के समय से दिया गया है। यानी इसका कोई ऐसा नहीं है कि एक समय में ऋषियों ने अपने मन में सोच करके इस गायत्री मंत्र को दिया। यह जो गायत्री मंत्र जो बालक को दिया जाता है, यह बहुत पुरानी परंपरा से दिया जाता है, एवं परंपरा प्राप्ति। जैसे सूर्य विवस्वान इत्यादि जो हम भगवद्गीता में सुनते हैं, तो ये परंपरा के द्वारा ये गायत्री मंत्र हमें प्राप्त हुई है। इसलिए कोई भी मंत्र की शक्ति, किसी भी मंत्र की शक्ति डायरेक्ट काम करती है कब? जब वो गुरु के माध्यम से या किसी ब्राह्मण या किसी वैष्णव के द्वारा प्राप्त की जाती है। जैसे हम लोग बताते हैं मंत्रों का शक्ति क्या है, मंत्र की शक्ति कैसे प्राप्त होती है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु जी हमने वो बुक में मंत्र पढ़ लिया है, हमने यहां मंत्र पढ़ लिया है, तो क्या अब हम इसका जप करके हम इसे प्राप्त कर सकते हैं, वो शक्ति हम इसकी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, या हमने यहां पर ये मंत्र को केवल सुना है लेकिन किससे, कोई बोनाफाइड व्यक्ति से नहीं सुना है, किसी प्रामाणिक व्यक्ति से नहीं सुना है, तो क्या हम वो मंत्र का जाप कर सकते हैं? तो ये बिल्कुल गलत धारणा है। मंत्र जो होता है वो जब तक किसी बोनाफाइड, किसी प्रामाणिक व्यक्ति से न प्राप्त हुआ जाए, तब तक वह जो ज्ञान है, वो जो मंत्र है, वो एक्टिव नहीं होता। मंत्र को एक्टिव कैसे किया जाता है? जब वो किसी प्रामाणिक व्यक्ति के हो, यानी उसको गुरु के द्वारा प्राप्त हो, उसको उसके गुरु के द्वारा प्राप्त हो, और फिर जब वो शिष्य को प्राप्त होता है तो वो मंत्र में शक्ति होती है, वो तभी एक्टिव होती है। उसका एक उदाहरण, एक वैदिक उदाहरण मैं आपको देता हूं। एक समय कहा जाता है कि ये जो पीपल का वृक्ष आता है, पीपल का जो वृक्ष होता है उस वृक्ष के बीज आते हैं, तो उन बीजों को अगर आप किसी जमीन में जाकर के गाड़ो और गाड़ करके उस पर रोज पानी डालोगे तो वो बीज कभी अंकुरित नहीं होगा, कभी बढ़ेगा नहीं, वो पीपल का पेड़ नहीं आएगा उससे। तो कैसे आता पीपल का पेड़? जब वो पीपल एक खासकर कहते हैं कि कौवा जो होता है, या कुछ लोग कहते हैं कि एक चिड़िया होती है, वो उस बीज को खाती है, और खा करके वो जिस भी स्थान पर मल का त्याग करती है, यानी अपने मल का त्याग करती है, उसी स्थान पर पीपल का पेड़ निकलता है। अब समझे, पीपल का पेड़ कैसे निकलता है? वो बीज को जब एक चिड़िया खाती है और उस चिड़िया को कहीं पर भी जाकर के लैटरिन कर देती है, मल का त्याग कर देती है, तभी वो पीपल का वृक्ष जो है वो उदय होता है। उसके पहले वो उदय नहीं होता, उसके पहले वो पीपल का पेड़ कहीं से नहीं आ सकता, उसे किसी भी प्रकार से आप उसको अंकुरित नहीं कर सकते, केवल उस चिड़िया के मल से वो पीपल का वृक्ष प्रकट होता है। तो ये पीपल के वृक्ष में जो एक हमारे गॉड, यानी जो हमारे दृष्टि में दिखाई देता है, वो भी इस प्रकार का है। क्योंकि इसके उदाहरण को भी आप समझ सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि जो पीपल के वृक्ष होते हैं वो कभी बिल्डिंग के ऊपर, घरों के ऊपर, छत के ऊपर भी आ जाते हैं, कभी किसी पेड़ के ऊपर भी लगे हुए पीपल के पेड़ दिखाई देते हैं। तो ये कहां से, ऐसे कैसे आ जाते हैं? तो इसका मुख्य कारण है वो चिड़िया जहां पर मल कर देती है, मल का विसर्जन कर देती है, त्याग करती है, वहीं पर वो पीपल का वृक्ष आता है। इसी प्रकार जो मंत्र होता है वो मंत्र की शक्ति हमें तभी मिलती है जब हम उस मंत्र को किसी प्रामाणिक गुरु के द्वारा ग्रहण करते हैं। यदि हम प्रामाणिक गुरु के द्वारा ग्रहण नहीं करते मंत्र, केवल हमने पढ़ लिया या हमने ऐसे ही सुन लिया या किसी ऐसे ब्राह्मण से ले लिया जिसने कभी किसी को गुरु बनाया ही नहीं है, तो वो मंत्र वो एक्टिव नहीं रहेगा, वो मंत्र कुछ काम नहीं करेगा। इसलिए बिना गुरु के कोई भी मंत्र वो व्यर्थ है, यूजलेस है, उन मंत्रों का कोई पाठ करके कोई लाभ नहीं है। हाँ, यदि मान लीजिए आपको कोई मंत्र की पाठ करने की यदि इच्छा है तो आप अपने शिक्षा गुरु या अपने गुरु से या किसी बोनाफाइड प्रामाणिक ब्राह्मण के द्वारा उन मंत्रों के विषय में चर्चा कर सकते हो, और यदि वे आज्ञा दे तो ही आप उस मंत्र का जप कर सकते हो, यदि वे आज्ञा नहीं देते तो आप उन मंत्रों का जाप नहीं कर सकते। इसलिए यह जो गायत्री मंत्र है ये शक्तिशाली है, लेकिन इसका तभी इसकी शक्ति प्राप्त होगी जब किसी प्रामाणिक ब्राह्मण या गुरु के द्वारा प्राप्त किया जाए, अन्यथा ये कोई कार्य नहीं है इसका। यानी जैसे एक मोबाइल दे दिया जाए जिसमें सिम कार्ड नहीं है और उसमें इंटरनेट भी नहीं है, तो वो क्या है हमारे लिए? वो यूजलेस है, कुछ नहीं, उसका कुछ काम नहीं है, पत्थर के समान लगेगा हमें। वैसे ही जब हम लोगों के अंदर जीव है, प्राण है, शक्ति है, लेकिन जब तक हम किसी गुरु के द्वारा मंत्र प्राप्त नहीं करेंगे तब तक वो शक्ति हमें प्राप्त नहीं होगी जिसके माध्यम से हम वेदों का अध्ययन या परमात्मा या भगवान को समझ सकेंगे। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। तो आज हम लोग इस उपनयन संस्कार में गायत्री मंत्र पर विचार कर रहे हैं। तो गायत्री मंत्र का मूल अर्थ केवल इतना ही है कि वह जो भूर्भुवस्व यानी तीनों लोकों के भगवान सवितुर्वरेण्यम यानी तत्सवितुर्वरेण्यम जो मंत्र का उच्चारण करते हैं, सविता जो है, सविता का अर्थ होता है सूर्य, तो हम उन सूर्य की आराधना करते हैं या सूर्य नारायण की आराधना करते हैं, तो वे हमें शक्ति प्रदान करें, इसलिए हम उनका धियो यो नः प्रचोदयात्, मैं उनका ध्यान करता हूं। इस प्रकार गायत्री मंत्र का पूरा विस्तार से चर्चा है। तो वैसे गायत्री मंत्र को कहीं पर भी उच्चारण नहीं करना चाहिए और उसको पब्लिकली उच्चारण नहीं किया जा सकता, और उसे जब हम संस्कार के विषय की भी बात कर रहे हैं तो यहां पर वैसे ब्रह्म गायत्री हर किसी को मालूम है, ओम भूर्भुवस्सः यह मंत्र सबको मालूम है, लेकिन फिर भी उसका उच्चारण कभी भी डायरेक्टली नहीं करना चाहिए। यदि आपके सामने सभी ब्राह्मण बैठे हुए हैं जिन्होंने गायत्री मंत्र धारण किया है तभी आप डायरेक्टली सबके सामने बोल सकते हो, अन्यथा उसको बोलने का अधिकार नहीं है या उसे पब्लिकली नहीं बोला जा सकता। तो अभी आप ये भी प्रश्न या मन में सोचते होंगे कि फिर जो टीवी में ऑडियो में हम सुनते हैं वो क्या है, तो वो भी मंत्र सुन के आपको कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि यह वेद मंत्र है, यह हरि नाम नहीं है, भगवान का शुद्ध नाम नहीं है, वो केवल वेद मंत्र है जिनसे वो एनर्जी, जिससे वो शक्ति प्राप्त होगी, वो एक माध्यम है। लेकिन जो हम भगवान की भक्ति की बात करते हैं या जो हरे कृष्ण महामंत्र की बात करते हैं, वे मंत्र स्वयं में शक्तिशाली हैं, इसलिए उनका उच्चारण कभी भी कहीं भी किया जा सकता है। लेकिन जो गायत्री मंत्र है ये वेद मंत्र है और इसके लिए अधिकार प्राप्त करना पड़ता है, बिना अधिकार के, बिना आसन के, बिना स्नान के, इसे बिना दिशा को देखे कहीं पर भी इसका जप नहीं किया जा सकता और कहीं पर भी इसका उच्चारण नहीं किया जा सकता। इसलिए गायत्री मंत्र को बहुत अच्छे से और नित्य उसका जप होना चाहिए और सिस्टमेटिक वे से होना चाहिए, प्रामाणिक गुरु प्रामाणिक ब्राह्मण के द्वारा होना चाहिए, तभी उसका पूर्ण रूप से लाभ पहुंचता है। आगे चलते हैं, शौच इत्यादि के विषय में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो जो उपनयन में शौच का बहुत महत्व है, जब हम जनेऊ धारण किया हुआ होते हैं तो जब टॉयलेट बाथरूम जाते हैं तो इस जनेऊ को यहां ऐसे कान में ऐसे तीन बार घुमा करके धारण करते हैं इस प्रकार। तो यह जो जनेऊ है उसको कान पे लगाना चाहिए मलमूत्र विसर्जन करते समय, क्योंकि जो शौच होता है उससे शुद्धि के लिए इस गायत्री मंत्र का जप करना अति आवश्यक होता है। क्षमा कीजिए, जब हम शौच के पास जाते हैं, शौच करने जाते हैं, तो वहां पर अपने कानों में इस उपनयन को बांध करके, इस जनेऊ को बांध करके फिर मलमूत्र का विसर्जन करते हैं। इससे क्या होता है, जो हम मलमूत्र का विसर्जन करते हैं वह हमारा जो नाभि है, नाभि, इसी नाभि से जो ऊपर का भाग है शरीर का वो शुद्ध माना गया है, और नाभि से नीचे जो शरीर का भाग है उसे अशुद्ध माना गया है। तो जब हम नाभि से, नाभि के ऊपर का कार्य करते हैं तो वहां पर गायत्री जो होती है वो हमारे साथ होती है, लेकिन यदि नाभि के नीचे के जब कोई कार्य करते हैं तो वहां पर उपनयन को ऊपर लेके कान में बांध दिया जाता है 3 बार, तभी हम लोग उससे शुद्धि प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा वेदों में विचार है कि जहां पर भी हम मलमूत्र का विसर्जन करते हैं वहां पे यज्ञोपवीत को कान में धारण करने से वहां पर बड़े बड़े जो देवी देवता होते हैं वो हमारे दाहिने कान में स्थिर होते हैं। रुद्र, मरुदगण, ये सभी जो हैं वो जो उपनयन धारण कर लेता है उसके दाहिने कान पर, दक्षिण कर्णे, दाहिने कान पर वे लोग वहां पर स्थिर होते हैं। इसलिए जब हम शौच के समय दाहिने कान को बांधते हैं तो वहां पर वो सभी देवी देवता उसको वहां पर बांधने से शुद्धि प्राप्त हो जाती है। तो यह जो उपनयन कान में बांधा जाता है इसके पीछे विज्ञान के भी काफी सारे मत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई इसमें साइंटिफिक वे क्या है, क्यों इसको बांधना चाहिए। तो इसका अर्थ ऐसा है, जो हमारा दाहिना शरीर का भाग है ये जो भाग होता है ये काफी शक्तिशाली या विधि विधान करने के लिए सबसे उत्तम माना गया है, सबसे पवित्र माना गया है। तो जो दाहिना भाग होता है हमारा वो पवित्र रहता है, और साथ ही यहां पे जो नसें होती हैं, यहां पे जो कान के इस भाग में नस होता है, उस नस को जब उपनयन से जब हम शौच करते समय बांधते हैं तो वो बांधने से जब हम मलमूत्र का विसर्जन करते हैं तो वहां पे अनायास ही वीर्य का पतन होता है, अनायास ही, हमें मालूम भी नहीं पड़ता। तो वो वीर्य का पतन ना हो या उसे हमारे जो अंदरूनी यानी जो आंतरिक हमारे अंग हैं उसमें किसी प्रकार का कोई दोष ना हो, किसी प्रकार का कोई रोग ना हो, उसके लिए ये जो उपनयन है यहां बांधने से उनमें लाभ पहुंचता है, और वहां पे प्रेशर पड़ने से मलमूत्र का विसर्जन भी उत्तम होता है, और साथ ही उसमें किसी प्रकार का रोग ना हो इसके लिए भी होता है। इसलिए जो कर्ण भेदन संस्कार है वो भी इसी से संबंधित है, कान को छिदवाने से वहां पे प्रेशर पड़ता है, वो एक पार्ट है जो उसको काफी उत्तम रखता है। और दूसरा है कि उपनयन करने के बाद जब बालक वहां पर जब मलमूत्र विसर्जन करते समय कर्ण को बांध के रखता है तो वहां पर भी उसे हर प्रकार की रक्षण जो है वो प्राप्त होती है। अब आगे हम विषय पे चर्चा करते हैं। मैं यहां पे कुछ चीजें आपके साथ बताता हूं पहले, और फिर हम उन विषयों पर चर्चा करेंगे। ये वो वस्तुएं हैं जो बटुक को दिया जाता है जब उपनयन संस्कार कराया जाता है, तो बटुक को, बटुक यानी वो बच्चा, वो बालक जिसको ये सारी वस्तुएं दी जाती हैं, अब वह गुरुकुल में जाकर के इन्हीं वस्तुओं को प्रयोग करेगा और अपने जीवन को उत्तम बनाएगा। तो आइए इन विषयों पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले यज्ञोपवीत यानी जनेऊ देना, इसके लिए मंत्र विधि के द्वारा हम लोग उसे उपनयन देते हैं, और उपनयन देने के बाद फिर कौपीन धारण कराते हैं। ये शब्द यहां पर मिस्टेक हुआ है, के कौपीन लिखा हुआ है, केवल कौपीन है। कौपीन जो होता है यह बालक को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि बालक जो होता है वो अपने कमर को, अपने कटी प्रदेश को बांध के रखता है, कठोरता से बांध के रखता है, और हमेशा तपस्या करने के लिए, तप करने के लिए इन वस्तुओं को, इनके द्वारा उसे काफी शक्ति और ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए ये जो लंगोट कह सकते हैं या कौपीन कह सकते हैं, बालक को बंधाया जाता है, जिसके माध्यम से वो आश्रम में ब्रह्म ज्ञान का प्राप्त करता है और सादगी में जीवन जीता है, तप करता है, सेवा करता है, और इसके द्वारा तेजस्वी, तपोमय और सेवा भावी बने, इसके लिए कौपीन दिया जाता है। इसके अलावा कौपीन का और भी लाभ है। कौपीन बांधने से ब्रह्मचर्य व्रत में काफी लाभ मिलता है। कौपीन या लंगोट बांधने से काफी लाभ मिलता है। उसके अलावा कौपीन को बांधने से यज्ञ करते समय भी कौपीन का प्रयोग किया जाता है, यानी कौपीन धारण करके ही बालक रोज नित्य यज्ञ कर सकता है। इसलिए कौपीन बहुत महत्वपूर्ण होता है। और उसके अलावा वो परिश्रमी बने, इसके लिए भी कौपीन को धारण कराया जाता है। कौपीन के काफी सारे लाभ हैं। तो जो लोगों ने ब्रह्मचर्य आश्रम में कभी रहे हैं या ब्रह्मचर्य आश्रम का ट्रेनिंग लिया है, हमारे इस्कॉन में VTA नामक वैष्णव ट्रेनिंग एकेडमी करके एक ट्रेनिंग होता है जो एक वर्ष या तीन वर्ष के लिए होता है, तो वहां पर उनको सिखाया जाता है कि किस प्रकार कौपीन धारण करना चाहिए, उसके लाभ क्या होते हैं। तो कौपीन हर समय में बहुत ही उत्तम माना गया है। इसलिए ब्रह्मचारी को कौपीन धारण करना यह सिखाया जाता है। अब उसके आगे आती है मेखला। मेखला यानी ये वो मेखला, मेखला कैसे बोलते हैं, जो कमर के ऊपर नाभि से लेकर के कमर तक उसे सूत के धागे या जो कुशाग्रास होता है उसका एक बहुत बड़ा धागा होता है, उसे बालक के कमर में लपेटा जाता है, उसको मेखला बंधन कहते हैं। तो मेखला बंधन से क्या क्या लाभ होते हैं? ये गलत तरीके से जो बैठने की आदत होती है हम लोगों को हमेशा आदत होती है, कभी टेढ़ा बैठेंगे, कभी कमर को झुका के बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी करके बैठेंगे, इस वजह से जो हमारा जो कमर का भाग है वो काफी कमजोर हो जाता है, और इसी कारण से बहुत सारे रोग होते हैं, ध्यान केंद्रित नहीं होता। हम किसी भी वस्तु को यदि सीखना चाहते हैं या कोई भी वस्तु को ध्यान पूर्वक किसी विषय को सुनना चाहते हैं तो हम सुन नहीं सकते, क्योंकि जब हम लोग टेढ़े बैठते हैं यानी अपने कमर को टेढ़ा कर लेते हैं, रीढ़ की हड्डी को झुका देते हैं, तो उससे बहुत सारे रोग भी होते हैं। योग में और आयुर्वेद में इसके ऊपर काफी बड़ा विचार किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अगर टेढ़ा बैठता है, केवल रीढ़ की हड्डी को टेढ़ा करके बैठ जाता है, तो उसमें बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं केवल टेढ़े बैठने से। इसलिए सदैव मेरुदंड यानी जो हमारा रीढ़ की हड्डी है वो सदैव खड़ा, स्ट्रेट रहना चाहिए। जब हम भोजन लेते हैं तो थोड़ा सा झुक सकते हैं, लेकिन विद्या अध्ययन करते समय और जप करते समय, उसके अलावा है यज्ञ करते समय, अन्य समय में हमें अपने जो रीढ़ हड्डी होती है हमारी उसको सीधा रखना चाहिए। तो मेखला बंधन इसलिए होता है, इसलिए जब पेट पे उसको इतना टाइट बांधा जाता है कि वो हर प्रकार से नित्य निरंतर सेवा करते रहे और कभी भी आसन को बराबर तरीके से धारण करे। जब आप पेट के ऊपर किसी एक मोटा पट्टा बांध लो तो आप पाओगे कि आप आसानी से झुक करके नहीं बैठ सकते, आप चाहे तो अपने घर में प्रयास भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये मेखला बंधन बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं दंड के ऊपर। ये जो दंड है, दंड का मतलब होता है सजा देना। तो किसको सजा देना चाहिए? उस बालक को नहीं। दंड का मतलब होता है एक डंडा। कैसा डंडा? वो डंडे से बालक अपनी रक्षा कर सकता है, वो डंड के समान अपना जीवन जिए। गुरु को जब प्रणाम किया जाता है तो कैसे प्रणाम किया जाता है? दंडवत, दंडवत यानी जैसे डंडा कैसे जमीन पे गिरता है, उसी प्रकार शिष्य जो होता है वो गुरु को प्रणाम करता है। मैं आपके साथ एक फोटो शेयर कर रहा हूं कि आप यहां पर देखेंगे कि कैसे शिष्य गुरु को प्रणाम करता है। तो इस प्रकार ये दंड प्रणाम करने का एक विधान बताया गया है। तो हम लोग देखते हैं कि बालक को उसी समय यज्ञोपवीत के समय भी हम उसको बताते हैं किस प्रकार प्रणाम करना चाहिए और उसे दंड को साथ में झुका करके गुरु को प्रणाम करना चाहिए। सन्यासियों को दंड झुकाने का विधान नहीं लिखा है, लेकिन जो गुरु होता है उसके आगे जो बटुक होता है वो उसको प्रणाम कर सकता है दंड के समान, या ये दंड ना भी झुकाया जाए तो भी उसे दंड के आधार, दंड के हिसाब से प्रणाम करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो दंड है, जब बालक जैसे पहले गुरुकुल में हुआ करते थे तो वहां पर वो जंगल में जाकर के समिधा इकट्ठा करते थे, तो समिधा इकट्ठा करने के साथ ही साथ उनके उनको अपने रक्षण करने के लिए किसी पशु से बचने के लिए या कोई कोई ऐसी वस्तु है जहां उसको तोड़ पाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए उसके साथ सदैव उसका एक दंड होता है। तो दंड धारण करना यह भी एक महत्वपूर्ण विधि है। अब इसके आगे आता है दंड के बाद में आता है मृग चर्म या रेशम वस्त्र धारण कराया जाता है। तो मृग चर्म जो होता है, क्षमा कीजिए, मैं इसमें मेखला बंधन में एक और महत्वपूर्ण बात कहना रह गया मेरा। तो जो हम लोग, हमारे शरीर में पांच प्रकार की वायु होती है, जिसमें से जो नाभि के पास होती है, नाभि और पेट के पास में जो वायु होती है उसे अपान वायु कहते हैं, और हमारे हृदय में होती है प्राण वायु। तो प्राण वायु और अपान वायु ये दोनों प्राणायाम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो बालक में जो ऊर्जा शक्ति होती है उसकी वृद्धि काफी अच्छी सी होती है। यानी जब पेट अच्छे से क्लीन होगा और ऊर्जा हमारी अच्छे से बनी रहेगी तो हम हर कार्य को बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। इसलिए शौच के समय हमारा पेट अच्छा क्लीन होना, स्टमक को क्लीन करना, पेट अच्छे से साफ होना, ये बहुत जरूरी होता है। तो बालक को बचपन से ही उसकी आदत बन जाती है, क्योंकि वो हमेशा पेट को बांध के रखता है। और इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि वो कहीं पर भी किसी प्रकार से जब उसका पेट जो है वो बाहर ना जाए, अगर वो अच्छे से बैठेगा, नियम पूर्वक बैठेगा, तो उसका जो पेट होता है वो भी काफी बंधा हुआ और सुस्थिर होता है। इसलिए ब्रह्मचारियों का पेट जो होता है वो अंदर होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि वो किसी भी कार्य को करने के लिए सदैव तत्पर रहे। उसे यदि कोई गुरु की किसी प्रकार की यदि आज्ञा प्राप्त हो तो उसे बिना रोक टोक के, बिना किसी कष्ट के वो अपने गुरु का पूर्ण रूप से आज्ञा पालन कर सके। इसलिए मेखला बंधन, मेखला वैसे तो एक प्रकार की रस्सी होती है कुशाग्रास की, लेकिन यदि वो रस्सी नहीं भी हो तो सूत कपड़े, इसको 2-3 मीटर का जो कपड़ा है उससे लपेट करके कमर को बांधा जाता है, तो इस प्रकार भी वो मेखला बंधन किया जाता है। आगे आता है दंड। तो दंड के विषय में भी हमने चर्चा कर ली कि दंड जो होता है रक्षण करने के लिए होता है, और सदैव दंड जो होता है वो एक प्रकार का वैराग्य के लिए भी उसका स्वरूप होता है। अब आगे आता है मृग चर्म, रेशम वस्त्र या सूती वस्त्र बालक को प्रदान किया जाता है। ये जब उपनयन संस्कार किया जाता है तो ये सारे वस्तुएं बालक को निश्चित रूप से दिया जाता है। तो इसमें वैसे मृग चर्म का ही महत्व ज्यादा दिया गया है, इसमें रेशम वस्त्र और सूती वस्त्र को नहीं बताया है। ये तो इसलिए बताया है क्योंकि आजकल आपको मृग चर्म मिलेगा नहीं, अगर मिल गया तो पुलिस वाले भी आ जाएंगे। तो इसलिए मृग चर्म जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। मृग जो होता है, मृग यानी हिरण, हिरण जो होता है जब तक अपने जीवन काल में वो जीवित रहता है तब तक वो हमेशा यहां वहां देखता रहता है, अपने प्राणों की रक्षा के लिए सदैव चंचल रहता है, दौड़ता रहता है। लेकिन जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका वही मृग चर्म जो होता है वो सुस्थिर बनाने के लिए, एक स्थान पर रखने के लिए उसका बहुत बड़ा विधान है। जो मृग चर्म पे तपस्या जो पहले के ऋषि मुनि किया करते थे उसके बहुत बड़े लाभ हैं। अगर मृग चर्म को आप अगर बिछा करके बैठते हो तो आपके शरीर के पास कोई चींटी, किसी भी प्रकार के कोई ऐसे जो चूहा, छिपकली या सर्प इत्यादि, वो आपको आके टच नहीं करेंगे। मृग चर्म की ये व्यवस्था है। उसके अलावा मृग चर्म पर बैठने से काफी ऊर्जा प्राप्त होती है और वो हमें शक्ति भी प्रदान करती है, इसलिए मृग चर्म पे बैठना ये उत्तम माना गया है शास्त्रों में। अभी देखिए हमारे शास्त्र में किस किस पशु का क्या क्या वस्तु प्रयोग में लाने लायक है उसी को प्रयोग किया गया है। तो लेकिन लोगों ने इसको गलत मान करके केवल उसका बिजनेस करना, इसका व्यापार करना प्रारंभ कर दिया, इस वजह से ये सारी वस्तुएं अब हमसे दूर हो गई। क्योंकि लोगों को अति करने की आदत है, कोई भी वस्तु को ज्यादा से ज्यादा अपने लाभ के लिए प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन पहले के समय होता था, जो मृग होते थे उनकी मृत्यु हो जाती थी, कभी कोई शेर खा जाता था, कभी कोई राजा जाकर के आखेट करता था, शिकार करता था, तो मृगों को मारते थे। तो मृग को मृत्यु होने के बाद उसके खाल को या उसके जो चर्म है उसको निकाल करके उसे आसन के रूप में रखा जाता था। तो आज के समय मृग चर्म तो नहीं रखा जा सकता, मिलेगा भी नहीं आपको, यदि कोई दुकान वाला बेच भी रहा है तो उसके ऊपर भी बहुत आपत्ति आ जाएगी। मैंने अपने जीवन काल में कई स्थानों पर गुरुकुल इत्यादि में देखा है, अन्य अन्य बाहर के जो गुरुकुल हैं, तो मृग चर्म मैंने देखा है, उसे देख करके लगता ही नहीं कि मृग चर्म है। खैर, तो मृग चर्म यदि नहीं मिलता तो रेशम का वस्त्र बालक को दिया जाता है या तो सूती वस्त्र दिया जाता है। यानी इसका अर्थ यही है कि जब वो आसन पे सदैव बैठे, बिना आसन के कभी ना बैठे, इसके लिए ये आसन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम कोई भी जप करते हैं, दान करते हैं, यज्ञ करते हैं या भोजन करते हैं, तो उस हर समय हमें आसन पे बैठे रहना चाहिए। वैसे मृग चर्म पे बैठ के भोजन करने का विधान नहीं दिया है, लेकिन हम सूती वस्त्र पे बैठ करके आसन ग्रहण करके या भोजन करने का आसन अलग भी रखते हैं या अलग रखा जाता है, तो भोजन को छोड़ करके बाकी हर स्थानों पे आसन का प्रयोग होता है। यदि आप इस समय भी कथा सुन रहे हैं तो आपको आसन पे बैठ करके कथा श्रवण करना चाहिए। हमें सो करके कहीं पर भी लेट करके इधर उधर घूमते चलते फिरते कथा का श्रवण नहीं करना चाहिए। एक आसन पर बैठ करके ध्यान पूर्वक कथा का श्रवण करने से हमें उसका पूरा लाभ मिलता है। इसलिए ये वस्त्र या जो सूती वस्त्र या मृग चर्म जो दिया जाता है बालक को, कि वो स्थिर रह करके हर शिक्षा हर ज्ञान को प्राप्त करे। और अंत में आता है भिक्षा। जब बालक का उपनयन संस्कार कर दिया जाता है तो उसको भिक्षा के लिए हर स्थान पर भेजा जाता है, उसे अनेकों अनेकों स्थान पर भिक्षा मांगने के लिए जाया करते हैं। तो भिक्षा मांगने के लिए सबसे पहली बार जब उपनयन संस्कार हो जाता है तो बालक जो होते हैं वो सबसे पहले वो अपनी माता से भिक्षा मांगते हैं, और माता से जब वो भिक्षा मांगते हैं तो क्या कहते हैं, भवती भिक्षाम देही। वो इस प्रकार से मां से भिक्षा मांगते हैं। मैं आपको एक भिक्षा का फोटो आपको भेजना चाहता हूं, देखिए आप सभी। तो ये माता के आधार पे भिक्षा मांगा जाता है, भवती भिक्षाम देही। आप इस फोटो में आप देख रहे होंगे कि हम बालक को माइक लगाया है और वो बोलता है कि भवती भिक्षाम देही, यानी माँ मुझे भिक्षा दीजिए। तो उसको इस प्रकार से भिक्षा दान किया जाता है। पहले दंड दिया जाता है, वो उसके पास जो वस्त्र है वो रेशम का वस्त्र या सूती का वस्त्र दिया जाता है, और वो सभी ले जा करके पहली बार माता से भिक्षा मांगता है। आप इस फोटो में और ध्यान से यदि देखेंगे तो हमने बालक के कमर में मेखला बांधी है। वैसे यहाँ पे उसका दिखाई आपको देना थोड़ा मुश्किल है। तो इस प्रकार बालक जो होता है वो भिक्षा मांगता है पहली बार माँ से। तो ये भिक्षा माता से जब मांगता है तो भवती भिक्षाम देही, और जब पिता से भिक्षा मांगता है तो भवान भिक्षाम देही। इस प्रकार से वो भिक्षा ग्रहण करता है। तो जो भिक्षा होता है इसका अर्थ क्या है भिक्षा का? भिक्षा मांगने से सबसे पहला लाभ होता है, उसे हर प्रकार का जो अहंकार रहता है जीवन में वो चला जाता है कि मैं राजा का बेटा हूँ, मैं धनी व्यक्ति हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं अच्छे परिवार से जन्मा हूँ, मैं बड़ा ब्राह्मण हूँ। ये जो अहंकार होता है उसको नष्ट करने के लिए भिक्षा मांगने के लिए एक विधान बताया गया है। सोचिए हमारे शास्त्रों ने कितनी विधियों को बहुत ही सरलता से उसको धारण करा दिया है, और जब हम उन नियमों का पालन करते हैं तो हमारे अंदर उन सारे दोषों का अपने आप निवृत्ति हो जाता है। इसलिए हमारे परंपरा में इस्कॉन संस्था में भी जब दीक्षा दिया जाता है तो दीक्षा देने के बाद क्या किया जाता है, उसे भिक्षा के लिए उसे छोड़ा जाता है, तो वो जा करके गली गली गांव गांव घर घर भिक्षा मांगते हैं। तो वैसे ये भिक्षा का विधान में भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो भिक्षा क्या करता है, उसे अहंकार से दूर रखता है। केवल इतना ही नहीं, और भी लाभ है। जब वो भिक्षा मांगता है तो भिक्षा मांग करके जो अन्न मिलता है उसी अन्न को वो लोग कुकिंग करते हैं, उनको रसोई में पकाते हैं, और उसको पहले भगवान को अर्पण करके, गुरु को अर्पण करके, और फिर उसके बाद में जब गुरु की आज्ञा से उन्हें प्राप्त होता है तभी वो उसको ग्रहण करते हैं। गुरुकुल का नियम ऐसा है, ये भिक्षा मांगने के बाद भी नियम ये है कि वो बालक का अधिकार नहीं है उस भिक्षा पे। ऐसा नहीं है कि उसने भिक्षा मांग के लाए तो ये उसका है। भिक्षा मांग करके ला करके वो गुरु को देता है, गुरु को समर्पित करता है, यानी उस ब्राह्मण या गुरु को देता है, और वो गुरु चाहे तो उसे देना चाहे तो दे सकता है, वो चाहे तो रखना चाहे तो रख सकता है। तो आजकल के जो ब्राह्मण या गुरु है वो अपने पास ही रख लेते हैं, शिष्य को देते भी नहीं है। लेकिन ये शिष्य को उसका कुछ भाग गुरु चाहे तो अपनी सम्मति से उसे दे सकता है, या जनरली देते हैं गुरु लोग। तो हम जो ये जो भिक्षा उसे प्राप्त होती है, उसके जो भोजन करने की लालच इच्छा होती है, लालच वाली इच्छा कि मैं कुछ भी खाऊं, कैसे भी खाऊं, कहीं पर भी खाऊं, हाँ, वो चीजों को कंट्रोल किया जाता है, ताकि बालक को अच्छा पौष्टिक आहार तो मिलना चाहिए लेकिन साथ ही साथ उसके अपने जिह्वा पर भी उसे वश में लाना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, कंट्रोल करना। तो इसलिए लोग, बालक जो होते हैं वो अपने जिह्वा पर कंट्रोल नहीं करते, जब खासकर 11 वर्ष से 15 वर्ष की जो आयु होती है उसमें बालक को खाने की इच्छा बाहर की यहां वहां के बहुत अननेसेसरी खाते रहते हैं, क्योंकि शरीर का विकास भी बढ़ चुका है, शरीर की डिमांड काफी बढ़ जाती है, तो वे लोग खाना भी बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उस समय उनके खाना पर कंट्रोल करना ये बहुत जरूरी होता है। अगर वो कुछ भी खाते रहेंगे और जब चाहिए तब खाते रहेंगे और भर भर के खाते रहेंगे तो उनके जो शरीर का सही मानने में विकास होना चाहिए वैसा नहीं होता है। ऐसा नहीं कि बच्चों को आप अच्छा पोषण तत्व मत दीजिए या उसे खाना दिन में एक ही बार दीजिए, ऐसा नहीं है। दिन में 2 बार 3 बार यदि 4 बार चाहे तो भी खिला सकते हैं, लेकिन सभी को नियम से खिलाना चाहिए। जब नियम से वो खाएंगे, नियम से सोएंगे, तो उसी प्रकार उनका जीवन भी शुद्ध आचरण वाला और सरल बनेगा। इसलिए बटुक को कुछ और भी नियम दिए जाते हैं, और उसके नियम क्या है कि तुम कभी रात में नहीं जागोगे, सूर्य उदय के पहले उठ जाओगे, ऐसे कुछ नियम दिए जाते बटुक को, और वो नियम का पालन करते हैं गुरुकुल में। तो ये सारे नियम, अब हम इसे घर पे करना तो मुश्किल है, बहुत कठिन है, तो क्या कर सकते हैं, पहले खुद के आचरण में लाना है। अभी हम तो भिक्षा मांगने नहीं जाएंगे, लेकिन भिक्षा के अलावा जितने भी नियम हैं कि बालक को आपको जो शिक्षाएं देनी है उसके लिए माता पिता को प्रयत्न करना होगा। तो यदि वे चाहते हैं कि उनके बालक का उपनयन संस्कार हो, उनका बालक ज्ञानी बने, तेजस्वी बने, ओजस्वी बने, शक्तिशाली बने, तो उनको चाहिए कि वे खूब खूब इस वेदों का अध्ययन करें और साथ में नियमों का अच्छे से पालन करें, ब्रह्म मुहूर्त में जागें, तभी उनके बालकों को उपनयन संस्कार करके उनको अच्छी शिक्षाएं दी जा सकती है। तो इसलिए हम सभी वैष्णव जो होते हैं जल्दी किसी का उपनयन संस्कार नहीं करते हैं, लेकिन यदि कोई चाहता है करना तो उससे पहले हम माता पिता के बारे में सुनते हैं, उनके नियमों के विषय में सुनते हैं, उनके साथ हमारा थोड़ा पुराना संबंध होता है, तभी हम जाकर के उपनयन करते हैं। क्योंकि ये जो उपनयन है ये एक प्रकार की दीक्षा है, तो जो दीक्षा है ये ब्राह्मण या गुरु के द्वारा दी जाती है गायत्री मंत्र के द्वारा, लेकिन इसमें केवल ब्रह्म गायत्री दी जाती है। हमारे इस्कॉन में 7 गायत्री का पालन किया जाता है, लेकिन जो उपनयन संस्कार होता है उसमें केवल ब्रह्म गायत्री का पालन किया जाता है। इसलिए ब्रह्म गायत्री का जो जाप होता है वो केवल उपनयन के बाद होता है, लेकिन जब कोई किसी इस्कॉन संस्था में जाकर के गुरु से और कोई शिक्षा लेता है, दीक्षा लेता है, तब उसको और आगे के 6 गायत्री मंत्र दिए जाते हैं। तो इसलिए ये मन में कोई प्रश्न ना लाए कि क्या हम लोग जो इस्कॉन में गायत्री मंत्र देते हैं और ये मंत्र देते हैं ये सब एक जैसा ही हो जाता है, तो उसके बाद गुरु से गायत्री मंत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है, गुरु से गायत्री मंत्र लेने की आवश्यकता है। इस्कॉन संस्था में हम लोग जो ब्रह्म गायत्री देते हैं, ब्राह्मण जो देते हैं, वो केवल ब्रह्म गायत्री होता है और वही गायत्री उसे जप करता है, लेकिन जब गुरु उसे आगे की गायत्री देना चाहे तो भी वो दे सकता है। ऐसा जरूरी भी नहीं है कि आप केवल उस ब्राह्मण से ही आपको जो गायत्री मिल गया वही इनफ है, या अगर गुरु ने वापस दिया तो वो गायत्री मंत्र का अर्थ नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, गुरु जिस प्रकार से उस मंत्रों का उच्चारण करता है उसी प्रकार जब हम उन मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो वो एक्टिव होता है, इसलिए उसे ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए और ध्यान पूर्वक उसका जप करना चाहिए। तो इस प्रकार हम लोग उपनयन संस्कार के विषय में सुन चुके और समझ चुके हैं। इसमें मैंने काफी सारे बातों को पढ़ा और सुना और मैं चाहता था बताने के लिए, लेकिन कैसा होता है कि हर विषयों के विषय में पहले ही हम पूरी चर्चा कर लेंगे तो हमें उसके विषय में आगे जो मूल तत्व रहस्य है उसके विषय में समझना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हमारी जो बुद्धि की शक्ति होती है, जो क्षमता होती है, वो हमें कुछ कुछ बातों को ही हमारे अंदर उसे ग्रहण करने की योग्यता होती है। लेकिन समय आने पर धीरे धीरे जब हम इसके ऊपर और विस्तार से चर्चा करते हैं तो उनमें हम पाते हैं कि हमें और कुछ वो बातों को हमने ग्रहण कर लिया है। इसलिए पहले जनरल नॉलेज दिया जाता है और बाद में फिर उसके ऊपर हम लोग उसके ऊपर डिटेलिंग चर्चा करते हैं। तो ये मैंने जो आपको गायत्री के विषय में बताया ये केवल जनरल चर्चा है, ये डिटेल नहीं है, डिटेल इससे भी ज्यादा है। तो कुछ लोग सोचेंगे अच्छा अगर ये डिटेल नहीं था तो क्या था, तो ये केवल इन्फॉर्मेशन था गायत्री के बारे में। केवल मंत्र के विषय में काफी सारी चर्चाएं हैं, गायत्री को कब कहां कैसे पहनना चाहिए, जैसे हम यज्ञ करते हैं तो बाएं कंधे से दाहिनी की तरफ होता है, जब श्राद्ध करते हैं तो लेफ्ट राइट से लेफ्ट की ओर होता है, और भी उसके ऊपर नियम है कि कब कहां किस प्रकार से यूज करना चाहिए गायत्री मंत्र को, उसके विषय में भी हम काफी विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। लेकिन अभी हम पहली बार इस केवल संस्कारों के विषय में सुन रहे हैं, इसलिए हमें इतना ही जानना हमारे लिए श्रेयस्कर माना जा सकता है। और भी इसमें बहुत चर्चाएं हैं, लेकिन हम कभी इसके ऊपर केवल उपनयन संस्कार पे ही हम लोग पूरा दिन बोल सकते हैं, या कम से कम 2-3 घंटे उपनयन संस्कार पे बोलना होगा, लेकिन वो भी तभी बोला जा सकता है जब हमारी जो ऑडियंस होती है, जो हमारे सामने जो लोग बैठते हैं उनको काफी कुछ इस विषय में पता होता है, तभी इन विषयों पर ज्यादा विस्तार से चर्चा की जा सकती है। और एक महत्वपूर्ण बात है, गायत्री मंत्र दाहिने कान से दिया जाता है, क्योंकि गायत्री मंत्र दाहिना कान जो होता है हमारा, ये हमारी शक्ति का, यानी हमारा जो सोचने की शक्ति होती है, जो समझने की शक्ति होती है, वो दाहिने साइड में होती है, और जो क्रिया करने की शक्ति होती है, खासकर आर्ट वगैरह जो है, यानी किसी प्रकार का किसी इनोवेशन करने की आदत होती है, वो लेफ्ट से आती है। राइट से हमारे अंदर शोषण करने की, ज्ञान प्राप्त करने की, और उसको अपने जीवन में या अपने हृदय पटल में उसको काफी सारा मंथन करने की क्षमता वो बढ़ा सकता है दाहिने के द्वारा। इसलिए दाहिने कान से, राइट ईयर से हमें, कान से हमें गायत्री मंत्र प्राप्त दिया जाता है, किया जाता है या कराया जाता है। ठीक है, तो अब हम यहां तक हम गायत्री मंत्र के विषय में और उपनयन संस्कार के विषय में हमने विस्तार से चर्चा की, जो हमारे लिए जितना उपयोगी था उतना हमने चर्चा किया। अब हम इसके बाद में समावर्तन संस्कार के विषय में चर्चा करेंगे। समावर्तन संस्कार, यह जो संस्कार होता है, इस संस्कार में बालक को बहुत ही जब वो उसका उपनयन संस्कार हो गया, गुरुकुल में जाकर के पढ़ लिया, तो पढ़ाई करने के बाद जो कंप्लीट कर लेता है तो उसके बाद में इसको ग्रेजुएशन सेरेमनी या समावर्तन संस्कार कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ग्रेजुएशन सेरेमनी जब हम बालक का कराना चाहते हैं तो जो बच्चे बालक होते हैं उनका 16 या 20 वर्ष के बाद में उनकी जो ज्ञान है, उन्होंने जो पढ़ाई की वो कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद में उनको समावर्तन संस्कार कराया जाता है। ये समावर्तन संस्कार क्यों कराया जाता है? क्योंकि जब बच्चा एजुकेशन ले लेता है तो एजुकेशन लेने के बाद अब वो उसका मेखला बंधन, जो हमने कहा था ना कमर पे पट्टा बांधा गया था, दंड दिया था, उन सभी को उसके लिए उसको वापस रिटर्न ले लिया जाता है, क्योंकि अब उसका कार्य गृहस्थ आश्रम में तो कुछ है नहीं ज्यादा, तो इसके लिए वो जो मेखला है वो उससे ले लिया जाता है, यानी उसको रिटर्न कर देता है वो, लेकिन गायत्री रखता है वो अपने पास, तो मेखला धारण जो किया रहता है वो निकाल देता है, दंड दे दिया जाता है उसको। अब वो आंखों में काजल लगा सकता है, बालों को बड़ा कर सकता है। अब वो जो हम देखते हैं ना कि बच्चे एक 18-20 साल के बाद में उन्हें काफी कहते हैं, हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं हीरो बनने की आदत हो जाती है, तो वो इसलिए आता है क्योंकि उस समय ऐसी हमारे शरीर में ऊर्जाएं उत्पन्न होती हैं, तो इसलिए बालक को जब शिक्षा पूरी कर दिया जाता है तो उसको श्रृंगार करने की अनुमति मिल जाती है। यानी पहले तो यह है कि यदि गुरु देखता है कि अब बालक हमारा तैयार हो गया है, अब इसको शिक्षा पूरा दे चुके हैं हम, अब इसको आगे गृहस्थ आश्रम में भेजना चाहिए, या गुरु डिसाइड करता है कि ये बालक गुरु गृहस्थ आश्रम में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोग ब्रह्मचर्य आश्रम से डायरेक्ट संन्यास भी लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं पहले गृहस्थ आश्रम में, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास में जाते हैं। तो ये सब हमारा वर्णाश्रम जो धर्म है, अभी आगे विवाह संस्कार से लेकर के जो आगे के संस्कार होंगे वो वर्णाश्रम धर्म के विषय में काफी विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो समावर्तन है इसमें बालक को हर प्रकार की श्रृंगार करने का, श्रृंगार इन द सेंस अब वो आंखों में काजल लगाना, रंग बिरंगे वस्त्र पहनना, जूता पहन सकता है, छाता ले सकता है, गुरुकुल में छाता वगैरह ज्यादा दिया नहीं जाता है, लेकिन अब वो छाता ले सकता है और हर प्रकार से वो सुख सुविधाओं को अब ग्रहण कर सकता है, योग्यता आ चुकी है, लेकिन उनमें ऑलरेडी अपने जीवन में इतना बड़ा ट्रेनिंग ले चुके हैं, अपने जीवन के सीखने के समय में उन्होंने वो चीजों को, वो कष्टों को प्राप्त किया होता है, इसलिए उन्हें इन सब चीजों का कोई ज्यादा आकर्षण नहीं पाया जाता उनमें, लेकिन फिर भी समाज के हिसाब से उन्हें धारण कराया जाता है, इसलिए समावर्तन संस्कार कराया जाता है। तो जब समावर्तन संस्कार होता है तो वो आचार्य को कुछ, उस आचार्य को उनकी इच्छा के अनुसार दान करता है, वो आचार्य से प्रार्थना करके उनको दक्षिणा देता है, तो आचार्य से वो प्रार्थना करता है कि भाई आचार्य हमें आज्ञा दीजिए हम आपको कौन सी दक्षिणा दे या कितनी दक्षिणा दे, क्योंकि गुरुकुल के पहले कोई दक्षिणा देने का विधान नहीं है, गुरुकुल का एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद दक्षिणा दिया जाता है, या बालक से गुरु कोई भी डिमांड करेगा तो गुरु उसे जो है वो जो शिष्य जो है वो उस गुरु का आज्ञा का पूरा रूप से पालन करता है। जैसे हम लोग भागवतम में सुनते हैं कि सांदीपनी मुनि के द्वारा भगवान को, क्षमा कीजिए अगर मैं शायद गलत बोल रहा हूं, मुझे यही नाम याद है, सांदीपनी मुनि जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को शिक्षाएं दी, और शिक्षाओं के बाद में जब उनका पूरा 64 कला उनको पूर्ण कर दिया गया, उनको पूरा दे दिया गया, उनका एजुकेशन कंप्लीट हो गया, तो भगवान ने कहा कि गुरुदेव मुझे आपको कुछ दक्षिणा देनी चाहिए, तो कहिए कि मैं आपको क्या दक्षिणा दूं। तो वे तो स्वयं जानते थे कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये तो स्वयं भगवान है, तो उन्होंने कहा कि मेरे पुत्र को मृत्यु हो गई थी कम उम्र में, तो उसको यमराज में है, यमलोक में है, तो आप उनको लेकर के आओ। तो वो भगवान यहां से यमपुरी गए, और वहां पे वो जो जीव था वो कहां पर था, किस जगह था, वहां से उसको स्वर्ग लोक से और अन्य अन्य स्थानों से उसको पूरा सर्च किया भगवान ने, और उसको उठा करके ला करके अपने गुरु को प्रदान किया। तो ये जी जब भगवान किसी के शिष्य बन जाए तो उसको अगर कुछ मांगना भी है तो वो जो भी मांगेगा भगवान उसे पूरा करता है। तो इस प्रकार ये समावर्तन संस्कार देने की पद्धति है, और केवल देना ही पद्धति नहीं है, इसके आगे और भी बड़ा विधान ये है कि जब ये संस्कार, समावर्तन संस्कार होता है तो उस बालक को गुरु कुछ उपदेश देता है और ये उपदेश आप लोगों के लिए भी काफी कारगर सिद्ध होगा। इसलिए इन विषयों के विषय में हम पढ़ते हैं और एक एक करके इनके विषय में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला है ये जो मैं अभी आप लोगों के स्क्रीन पर हम लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा हाँ, ये जो समावर्तन संस्कार है जिसमें पहला क्या है सत्यम वदा, यानी जो गुरु होता है वो अपने शिष्य को कई सारे शिक्षाएं देता है। सत्यम वदा, तुम सदा सत्य का भाषण करना। धर्मम चर, यानी पहले सत्य के विषय में क्या बताया गया है कि कभी भी कोई भी सिचुएशन, यदि कभी कोई गलती हो जाए, कुछ आपके जीवन में कभी कोई ऐसी आपदा विपदा आ जाए तो भी झूठ का कभी भी आश्रय नहीं लेना, ये पहला बात बताया जाता है, यानी गुरु के द्वारा प्रवचन होता है। फिर अपने वर्ण आश्रम के अनुकूल शास्त्र सम्मत धर्म का अनुष्ठान करना, ठीक है। धर्मम चर का अर्थ होता है अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल शास्त्र के सम्मत होकर धर्म का पालन करना, यानी हम लोग अपने मन से कोई धर्म का पालन नहीं करना चाहिए। जो हमको हमारे गुरु ने शिक्षा दी है या हमारा वर्ण और आश्रम में जिस प्रकार हम रह रहे हैं उस धर्म का पालन करना, जैसे कोई ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी का जो धर्म है उसका पालन करना चाहिए, उसको गृहस्थ का जीवन या गृहस्थी लोगों के साथ में नहीं रहना चाहिए। यदि कोई गृहस्थ व्यक्ति है तो उसको सन्यासी जैसा जीवन जीने का प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, उसको गृहस्थ जीवन ही जैसा जीवन जीना चाहिए। और वो वर्ण में हो, यानी यदि वो ब्राह्मण जैसा जीवन जी रहा है तो उसको क्षत्रिय बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यदि कोई शूद्र का जीवन जी रहा है तो उसको शूद्रता का जीवन को अच्छे से पालन करना चाहिए, या वैश्य है तो वैश्य का अच्छे से पालन करना चाहिए। इसलिए धर्मम चर ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आगे क्या है, स्वाध्यायन्मना प्रमदः, यानी स्वाध्याय से वेदों का अभ्यास, संध्या वंदन, गायत्री जप और भगवान नाम का गुण कीर्तन नित्य कर्म में कभी भी प्रमाद न करना। स्वाध्यायन्मना प्रमदः, यानी स्वाध्याय करने में किसी प्रकार का आलस्य नहीं करना चाहिए। जैसे जब हम जप वगैरह करते हैं, जो भी हम नियम का पालन करते हैं उसमें आलस नहीं करना चाहिए कि आज सवेरे नहीं उठेंगे, आज जप नहीं करेंगे, आज मूड नहीं है, इस प्रकार से कभी आलस नहीं करना चाहिए। उसके आगे बताया गया है आचार्यम प्रियम धन महत्वम प्रजातंतु माम व्यवक्षेत सी, अर्थात गुरु के लिए दक्षिणा के रूप में उनकी रुचि के अनुसार धन लाकर प्रेम पूर्वक देना, फिर उनकी आज्ञा से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना। इस प्रकार से वो गुरु के आज्ञाओं के विषय में बताया गया है और शास्त्रीय विधि के अनुसार धर्म पत्नी के साथ ऋतु काल में नियमित सहवास करना, संतान उत्पत्ति करना, अनासक्ति पूर्वक रहना। यानी देखिए ये गुरुकुल से ही, जब गुरुकुल से जब बच्चा बाहर आता है तो उस समय उसको जो शिक्षाएं दी जाती हैं उन शिक्षाओं के विषय में हम समझ रहे हैं, जिसमें आगे बता रहे हैं क्या कि सत्यायन प्रमादितव्यम, धर्मान प्रमादितव्यम, कुशलान प्रतितव्यम, भूतेव प्रतितव्यम, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम च प्रमादितव्यम, देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमितव्यम। यानी इसमें बताया गया है कि तुमको कभी भी सत्य में से नहीं चूकना है, हंसी और व्यर्थ की बातों में अपना समय नहीं लगाना चाहिए, अपनी वाणी को नहीं लगाना चाहिए। किसी का परिहास यानी किसी का अननेसेसरी मजाक लेना, निंदा करना, ये सब नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। और उसके आगे लिखा है धर्म पालन में भूल करके भी, इसी प्रकार धर्म पालन में भूल नहीं करना चाहिए, यानी धर्म पालन में भी गलती नहीं करनी चाहिए। और आगे लिखा है कि कोई बहाना बनाकर या आलस्यवश कभी धर्म की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। कभी कभी हम लोग सोच सकते हैं कि आलस्य के द्वारा और इन सभी के द्वारा हम लोग धर्म का पालन करते हैं, उस प्रकार हमें ऐसा कुछ कार्य नहीं करना चाहिए। ये स्क्रीन पे कोई इस प्रकार से जो रंग कर रहा है वो ना करे। उसके आगे बताया गया है कि लौकिक और शास्त्रीय जितने भी कर्तव्य रूप से प्राप्त शुभ कर्म हैं, उनका कभी त्याग नहीं करना चाहिए, अपितु यथा योग्य उनका अनुष्ठान करते रहना चाहिए। धन संपत्ति को बढ़ाने वाले लौकिक उन्नति को साधन के प्रति भी उदासीन नहीं होना चाहिए। यानी धन संपत्ति इत्यादि जो हमें प्राप्त होता है, उन साधनों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। यानी कभी जॉब को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप गृहस्थ आश्रम में जब चले जाओगे तो ऐसा नहीं कि आपको जॉब करने की इच्छा नहीं है, अभी चलो मैं केवल भक्ति करूंगा, घर और सब त्याग दूंगा। विवाह करने के बाद अगर कोई ऐसे गलत विचार धारण लाते हैं तो वो सब गलत है, उस समय नहीं लाना चाहिए। उनके विषय में मैं एक्सप्लेनेशन बाद में दूंगा। पढ़ने और पढ़ाने में जो मुख्य नियम है, उसका कभी अवहेलना या आलस्य पूर्वक त्याग नहीं करना चाहिए। यानी पढ़ने पढ़ने में जो नियम होते हैं उसका अच्छे से पालन करना चाहिए। और अग्निहोत्र यज्ञ आदि अनुष्ठान में ऋषि देव कार्य, श्राद्ध तर्पण, पितृ कार्य संपादन में भी आलस्य नहीं करना चाहिए और उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। यानी किसी भी प्रकार से किसी को उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। अरे हम यज्ञ नहीं करेंगे, अरे हम पितरों का श्राद्ध नहीं करेंगे, ये सब विषयों के बारे में कभी नहीं सोचना है। तो ये हो गया हमारा ऐसा पहला जो ज्ञान दिया जाता है गुरुकुल में, वो होता है। मैं शॉर्ट में और दो तीन मैंने इस पे पीपीटी बनाए हैं, आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूं। दूसरा इस प्रकार है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप आज आप लोग ये जो सुनोगे ये आपके लिए भी काफी लाभदायक है। जो लोग अभी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहते हैं या जिन्होंने अभी अभी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया है, उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसे ध्यान से पढ़िए। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। अब ये केवल चार जो हमारे लाइन है, इनके विषय में अगर हम चर्चा करें तो जब मैं छोटा बालक था, मैं अपनी बात कर रहा हूं नीलांबर दास की, तो मैं जब पहले बचपन में ये संस्कृत वर्ड पढ़ा करता था तो मुझे ऐसा लगता था मातृ देवो का मतलब होता है मुझे माता दो, पितृ देवो का मतलब होता है मुझे लगता है पिता दो, आचार्य देवो मतलब लगता है आचार दो, अतिथि मतलब अतिथि दो, ऐसा मुझे मेरी बुद्धि में था। लेकिन बाद में मुझे ये बात समझी कि मातृ देवो भवो का मतलब होता है कि अपने माता में देवताओं के बुद्धि करना या देव बुद्धि करना, यानी माता को देवता के समान या भगवान के समान समझना, पितरों को पिता को भी देवता के समान समझना। हमारे पिताजी यदि हमारे नियम का पालन नहीं करते, वो मांस खाते हैं, वो दोष युक्त जीवन जीते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें अपने पिता से द्वेष बुद्धि रखनी चाहिए, हमें भी पिता के प्रति वैसी सद्भावना रखनी चाहिए। इसलिए पितृ देवो भव, पिता में भी देव बुद्धि रखनी चाहिए, क्योंकि पिता का जन्म हो, पिता ने हमें जन्म दिया है, यथाशक्ति हमारा पालन पोषण किया है, अब हमारे पास ज्ञान आ गया है, तो इसलिए पिता का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। तो जब 20-22 वर्ष में जब बालक आ जाते हैं तो उनको बहुत बुद्धि आ जाती है, तो वे लोग अपने माता पिता का अवहेलना करते हैं, उनका अपमान करते हैं। ये बहुत गलत विचारधारा है, बहुत गलत विचारधारा है। इस विषयों को विषय में तो मैं काफी चर्चा करूंगा और मैं इसको छोड़ूंगा भी नहीं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम अपने माता पिता का अनायास उनका अपमान कर देते हैं। तो गुरुकुल में शिक्षा दी जाती है, जब वो गुरुकुल से बाहर निकलता है तो क्या बोलता है, सदैव माता के प्रति सम्मान करना, पिता को देव बुद्धि रखना, आचार्यों में देव बुद्धि रखना, यानी जो गुरु होते हैं, हमारे टीचर होते हैं, उनमें भी देवता की बुद्धि रखना। जैसे हम किसी भी देवी देवताओं की बात करते हैं तो हम उसको आगे झुकते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, क्योंकि वे बहुत शक्तिशाली होते हैं। उसी प्रकार उन आचार्यों में भी देव बुद्धि रखना। अतिथि देवो भव, हमारे घर पे कोई गेस्ट आए, मेहमान आए, तो भी उस समय हमें उसके अंदर अतिथि, यानी वो जो व्यक्ति बिना तिथि के आ गया है, आपको उसने फोन नहीं किया, व्हाट्सएप नहीं किया, मैसेज नहीं किया, लेकिन वो व्यक्ति यदि आपके घर आ जाए तो भी उस व्यक्ति के अंदर देवताओं वाली बुद्धि रखनी चाहिए। आजकल के समय हमको यदि कोई फोन करके आता है तो भी हम लोग उसको बोलते हैं अरे अभी मत आइए, आप बाद में आइए। लेकिन हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया है, अतिथि, जिसकी आने की कोई तिथि नहीं है, यदि वो भी आके घर में टपक जाए तो भी उसके अंदर देव बुद्धि करके उसकी सेवा करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अरे आपने फोन नहीं किया, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, आप बाद में आना चाहिए, ऐसी गलत भावनाएं नहीं रखनी चाहिए। इसलिए अतिथि देवो भव ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके आगे भी बताया गया है यन्यवद्यानी कर्माणी, यानी आशा है कि ये चारों ईश्वर के प्रतिमूर्ति हैं और इसके आगे इनके ऊपर जगत में जो जो निर्देशित कर्म हैं उन्हीं का तुम्हें सेवन करना चाहिए। और इसके आगे है तानी सेवितव्यानी, उनसे भिन्न जो दोषयुक्त निषिद्ध कर्म हैं उनका कभी भूल कर भी स्वप्न में भी आचरण नहीं करना चाहिए। अपने गुरुजनों के आचार व्यवहार में जो उत्तम शास्त्र और शिष्ट पुरुषों द्वारा अनुमोदित आचरण है, जिनके विषय में किसी प्रकार की शंका हो, स्थान नहीं है, उन्हीं को तुम्हें अनुकूल अनुकरण करना चाहिए। यानी जो गुरु के द्वारा जो हमें शिक्षा प्राप्त हुई है उसका भी हमें पालन करना चाहिए बिना भेद बुद्धि के, और उस पर कोई शंका नहीं करनी चाहिए। और जो कोई हमसे श्रेष्ठ है वय विद्या तप आचरण आदि में, बड़े तथा ब्राह्मण आदि पूज्य पुरुष घर पर पधारे, उनको पाद्य अर्घ आचमन दे करके उनकी सेवा करनी चाहिए। और अपनी शक्ति के अनुसार दान करने का भी यहाँ पर विस्तार में बताया गया है। यहाँ पर आगे आता है, ये जो मैं एक शब्द पढ़ता हूँ, जब आपने पढ़ा मातृ देव भव पितृ देव भव आचार्य देव भव अतिथि देव भव यन्मावद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि तो इतराणि यन्नस्माका सुचरितानि तानि वत्योपस्यानि तो इतराणि। ये जो आगे आगे जो संस्कृत में जो शब्द दिए हैं ब्राह्मण के आगे, तेषा त्वया सनेन प्रवेशितस्तव्यम् श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयम् श्रिया देयम् हिर्या देयम् धिया देयम् संविदा देयम्। बस ये इनके ऊपर मैं शॉर्ट में चर्चा कर देता हूं कि अश्रद्ध दान कभी भी जब करना चाहिए तो कैसे दान करना चाहिए। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, हम सभी को सीखने के लिए ये सारे समावर्तन संस्कार में ये सारे शिक्षाएं दी जाती हैं, तो इसलिए मैं इनका विस्तार से चर्चा कर रहा हूं, आप इसको ध्यान से सुनिए। अपने शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा अच्छा है और आप कंजूसी से पैसा देते हैं, और आपके पास पैसा नहीं है और आप कर्जा लेकर के पैसा दे रहे हैं दान कर रहे हैं, ये दोनों गलत है। इसलिए यदि अपने शक्ति के अनुसार तुम्हें दान करना चाहिए उदारता पूर्वक, यानी अच्छे से, यानी ज्यादा दिलदारी से दान करना चाहिए, और अश्रद्धा पूर्वक नहीं देना चाहिए। यानी अगर आप दान दे भी रहे हो तो आपके मन में कभी इस प्रकार की विचारधारा नहीं आनी चाहिए कि मेरे अंदर मैं इनको दान दे रहा हूं लेकिन पता नहीं क्या करते होंगे ये लोग, ऐसी कोई विचारधारा से दान नहीं करना चाहिए। उसके आगे लिखा है दान देते हुए कर्म आसित यानी माने गए लज्जा पूर्वक दान देना चाहिए। जब आप दान देते हो तो उस समय भी अपने आप को बहुत ही लज्जित मानना चाहिए कि मैं इनको जो दे रहा हूं ये तो मैं इनको कुछ भी नहीं दे रहा हूं, ऐसी भावनाहीन भावना मन में आनी चाहिए। अर्थात सारा धन भगवान का है और मैंने इसे अपना मानकर उनका अपराध किया है। देखिए कितना बड़ा विचारधारा है, जब हमारे पास धन भी होता है और जब हम उसे दान भी करते हैं तो इसी हीन भावना से कि ये तो भगवान का है, मैं कौन होता हूं उसको देने वाला, और ऐसी बुद्धि से दान करना चाहिए। उसके आगे भी लिखा है कि प्राणियों के हृदय में स्थित भगवान की सेवा करने में लगाना उचित था और मैंने ऐसा नहीं किया, तो मैं जो कुछ दे रहा हूं वह भी बहुत कम है। यानी ऐसी विचारधारा कि हम जो दे रहे हैं ब्राह्मण को या गुरु को आचार्य को वो क्या दे रहे हैं, नगण्य, यानी उसका कोई यूज नहीं है, हम तो यूजलेस हैं जो उनको दे रहे हैं और उनकी बड़ी कृपा है जो उसे ग्रहण कर रहे हैं। वैसे इसमें भगवद्गीता के 17वें अध्याय के 27वें और 20वें श्लोक में इसके बारे में दान के विषय में बताया गया है, अतः थोड़ा और इसके विषय में चर्चा कर रहा हूं, फिर हम एक अगले स्लाइड पे जाएंगे। और उसमें लिखा है मन से दानीपन का अभिमान नहीं आने देना है, यानी अगर आप दान कर भी रहे हो तो अपने आप को महान दानी ना समझें कि मैं कर्ण हो गया हूं या मैं बहुत बड़ा दानवीर हूं, महाराज शिवी, महाराज बली, ऐसे ऐसे अपने आप को राजा समझ करके दान नहीं करना चाहिए, अपने आप को हीन समझ करके दान करना चाहिए। और उसके आगे लिखा है कि भगवान को भगवान के भय से मानते हुए दान देना चाहिए, यानी ये सोचना चाहिए कि यही भगवान की कृपा है, यदि मैं दान नहीं करूंगा तो मुझे बहुत भगवान के प्रति दंड का भी शायद सामना करना होगा। और किसी का अपकार नहीं करना है, ऐसी भावना रखनी है मन में, विवेक पूर्वक एवं परिणाम को समझकर निष्काम भाव से कर्तव्य समझकर दान देना चाहिए, और भगवान की प्रीति का कल्याण साधन हो सकता है, इस प्रकार से दान करना चाहिए, यही अक्षय फल देने वाला है। इसलिए इसके अंत में लिखा है भिक्षा देयम संविदा देयम, यानी जब हम इस प्रकार से जब दान करते हैं तो ये सारे दान अक्षय दान होते हैं। जब आप अगर ऐसा ऐसी बुद्धि से अगर दान करते हो तो ये दान से क्या होगा, आपकी बुद्धि के द्वारा जिस प्रकार से हमने मनोभाव के विषय में समझा, इस प्रकार से अगर हम दान करते हैं तो हमें हर प्रकार का अक्षय दान, यानी ये जो दान हम कर रहे हैं ये कभी नष्ट नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा, इसका पुण्य बढ़ता ही रहेगा और हमारे जीवन में उसका लाभ हमें मिलता रहेगा। अब तीसरे और आखिरी स्लाइड पर चर्चा करेंगे, इसके बाद में हमारे कथा का विराम देंगे यहां पर। तो वैसे ये आखिरी स्लाइड अभी थोड़ी देर में आपके स्क्रीन पर शो हो पाएगा क्योंकि नेट काफी स्लो है आज। तो मैं आखिरी के विषय में चर्चा करता हूं, अथ यदि ते कर्म विचित्सा चा वृत्ति विचित्सा वा स्याद ये तत्र ब्राह्मणा समदर्शिनः युक्ता आयुक्ता अलुक्षा धर्म कामा स्यु यथा ते तत्र वर्तेन तथा तत्र वर्तेन अथाभ्यासक्षक्येष्टेषु। इसको हिंदी में पढ़ लेता हूं आपके लिए। ये सब करते समय भी यदि तुमको किसी अवसर पर अपना कर्तव्य निश्चित करने में दुविधा उत्पन्न हो जाए, अपनी बुद्धि से किसी एक निश्चय पर पहुंचना कठिन हो जाए, तो तुम कर्तव्य विमूढ़ ना होना और ऐसी स्थिति में कोई उत्तम विचार रखने वाले किसी अच्छे व्यक्ति से परामर्श लेना। जब आप अपने जीवन काल में किसी प्रकार का कोई दोष आपके जीवन में या मन में कभी कुछ शंकाएं उत्पन्न हो जाए, जीवन में ये समझ में ना आए कि क्या करूं, कैसे किसके साथ डील करूं, तो उस समय भी आप अपने किसी अच्छे परामर्श बड़े ब्राह्मण बुद्धिमान या ज्ञानी व्यक्ति से, हमारे इस कॉल में हम काउंसलर से ऐसी शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। और मैं कुछ और छोटे छोटे बातों में इनको विराम दूंगा। इसके अतिरिक्त जो मनुष्य किसी दोष के कारण लाक्षित हो गया है उसके साथ किस समय कैसा व्यवहार करना है, इस विषय में यदि तुमको दुविधा प्राप्त हो जाए तो तुम अपनी बुद्धि से निर्णय न लेकर के वहां में किसी विचारशील व्यक्ति से उनसे परामर्श लेकर के उस व्यक्ति के साथ सत्कर्म और सदाचार से पूर्णतया संलग्न तथा धर्मकामी निस्वार्थी विद्वान से परामर्श लेना चाहिए। तो इस प्रकार जब हम देखते हैं कि किससे, जब हमारे जीवन में कभी कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है कि उसके जीवन में हमें दोष नजर आता है, दोष दृष्टि होती है, तो उस समय भी हमें ऐसे व्यक्तियों के साथ में अच्छी बुद्धि रख करके उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, तो यानी इसमें जीवन के कई सारे पहलुओं पर चर्चा की गई है। अगर हम इसका विस्तार से चर्चा करते तो एक एक जो उनके वाक्य हैं उन्हीं वाक्यों में बहुत विस्तार से चर्चा की गई है कि किस प्रकार किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसे रहना चाहिए। और ये मैंने केवल आपको समावर्तन संस्कार का इंट्रोडक्शन में बताया है। जब समावर्तन संस्कार किया जाता है, वो जो विधि की जाती है वो अलग है, और समावर्तन संस्कार को हमको अच्छे से समझ करके अपने जीवन में उसका पालन करना है वो अलग है। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन में केवल गुरु उनको ये शिक्षाएं देता है, इसका मैंने कुछ उदाहरण आप लोगों के आगे रखा है। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा और आशा करता हूं कि मैंने जो आप लोगों को ये शिक्षाएं का जो खासकर समावर्तन संस्कार के विषय में समझाया, इसे आप अपने जीवन में उसी रूप में पालन करने का प्रयास करेंगे ताकि आपका जीवन शुद्ध हो, मंगलमय हो। धन्यवाद। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरीके से हम सभी लोगों को समझाया और आप इतने दिनों से भी इतने अच्छी तरीके से बता रहे हैं, उसके लिए भी प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन करा उपनयन संस्कार को, समावर्तन संस्कार को, उपनयन संस्कार को बहुत ही डीप में जाके आपने बताया, थैंक यू। एक भक्त का प्रश्न आया है कि जो जनेऊ जो होता है उसको किस किस परिस्थिति में अशुद्ध होता है जनेऊ, और जनेऊ को कैसे जब अशुद्ध होने के बाद बदला जाता है तो उसको कैसे बदला जाए।
हाँ मैं इस विषय पे बताना चाहता था लेकिन बीच में नेट इंटरनेट काफी स्लो हो गया था तो मेरा थोड़ा मन आगे पीछे हो रहा था, इस वजह से मैं वो विषय छूट गया मेरे से। तो खैर बहुत अच्छी बात है, उपनयन संस्कार कब कब अशुद्ध होता है, जैसे ये अभी मैंने उपनयन धारण किया हुआ है तो मान लीजिए ऐसा उपनयन हमने धारण किया हुआ है, कभी कभी अपने आप लेफ्ट साइड से ऐसे ऐसे गिरने लगता है उपनयन, तो उस समय ये अशुद्ध हो गया है, बदल देना चाहिए। उसके अलावा उपनयन संस्कार जब हम शौच इत्यादि करते हैं, जैसे हमने बताया कि कानों में बांधा जाता है, लेकिन अगर उस समय कभी गलती से हम बांधना भूल गए या हमसे हमारे कान से वो छूट के अपने आप खुल गया तो भी उपनयन संस्कार बदल देना चाहिए। जब हम श्राद्ध इत्यादि करते हैं तो श्राद्ध में जनेऊ पहनते हैं, लेकिन श्राद्ध कर्म कंप्लीट करने के बाद फिर उस जनेऊ को निकाल करके दूसरा जनेऊ धारण करते हैं, या कभी जैसे 2-3 महीने से ऊपर बीत जाता है तो भी उपनयन बदल देना चाहिए। उसके अलावा है कि जब हम कोई ऐसा स्त्री के साथ संग करते हैं उस समय भी वो जनेऊ को उपनयन को दो उसमें दोष आ जाता है, तो इसलिए उसको भी एक विधान बताया गया कि किस प्रकार से उसे लपेट के कंठी के प्रकार धारण करना चाहिए और नहीं तो उसको बदल देना चाहिए। या उसके अलावा और भी नियम बताए गए हैं शास्त्रों में कि कोई अगर कमर के नीचे की कोई भाग को यदि टच कर लेता है हमारा उपनयन तो उस समय भी हमें बदल देना चाहिए। उपनयन बदलने के लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले उपनयन को कैसे धागे को बनाया जाता है वो सीखना चाहिए, और उसमें ब्रह्म गांठ लगते हैं, उस गांठ को बांधने के बाद उसमें गायत्री मंत्र से उसको पवित्र करके गायत्री मंत्र का जाप करके उसके अंदर उसको धारण करना चाहिए गायत्री मंत्र का, और कम से कम 10 बार गायत्री मंत्र का जप करके भगवान को अर्पण करके फिर उसको धारण करना चाहिए। पहला जो जनेऊ हम पहनते उसे धारण करना चाहिए, फिर गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, और जो हमारा पुराना गायत्री है उसे निकाल करके और फिर उसे किसी पवित्र स्थल पर या बहते हुए जल में या किसी भी जल में विसर्जन कर देना चाहिए। ठीक है, किसी भी जल यानी कोई तालाब या नदी हो, तो नदी हो तो उत्तम है, लेकिन तालाब में कोई ऐसे स्थान पर मत फेंक दीजिए जहां लोग बहुत कचरा या गंदगी होता है, विशेषकर आजकल होता है, तो इसलिए आप किसी तीर्थ स्थल पर या किसी पेड़ के पास में उसके जड़ों में भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये जनेऊ को धारण करना चाहिए। हाँ, जनेऊ को उतारने का
सिस्टम, पहनने का तरीका और उतारने का दोनों का।
देखिए अभी ये तो मैंने पवित्री पहनी है क्योंकि मैं जनेऊ पहनूंगा और उतारूंगा नहीं अपना, तो इस प्रकार से हम लोग देखिए ये 3 उंगली है, अंगूठा और कनिष्ठ उंगली, उसके बीच में ये 3 उंगलियों को ऐसा रखा जाता है जनेऊ को, और इस हाथ में भी सेम एज इट इज वैसा ही रखा जाता है, और फिर इसे आकाश में भगवान को दिखाया जाता है और सूर्य को दिखाया जाता है पूर्व दिशा की ओर करके, और उसके बाद में इसमें इसके जो ब्रह्म गांठ होते हैं उसमें हल्दी लगाई जाती है, जैसे ये ब्रह्म गांठ मान लीजिए है इतना बड़ा गांठ है तो इसमें हल्दी लगाई जाती है, हल्दी लगा करके और इसे हल्दी लगा करके जब हम देवता सूर्य को आकाश को और भगवान को अर्पण करके और फिर उसे मंत्र बोल करके यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतये सहजं पुरस्तात् आयुष्मग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतम बलमस्ति तेजः, अगर आपको ये मंत्र चाहिए तो मैं संस्कार का जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है मैं उसमें भेज दूंगा, तो ऐसा मंत्र बोल करके ये जनेऊ पहनना चाहिए। अब इसको उतारने का विधि क्या है, अब मान लीजिए ये मेरा पुराना जनेऊ है तो इसको कैसे उतारना चाहिए, सबसे पहले इसको ऐसे गले में ऐसे कंठी के जैसा या माला के जैसा लटका देना चाहिए, और इसका भी एक मंत्र है, वो मंत्र बोल करके फिर इसको ऐसे करके ऊपर से उतार लेना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं उसको पूरे बॉडी से नीचे उतार करके तब फेंकना चाहिए या विसर्जन करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये गायत्री नाभि से ऊपर के लिए है, नीचे के लिए नहीं है, इसलिए इसे ऊपर से ही उतारना चाहिए, ऊपर से ही पहनना चाहिए, ऊपर से ही निकालना चाहिए। हाँ, एक और बात है, गायत्री का दूसरी बार जब हमें जनेऊ धारण करना है तो कब कर सकते हैं, जब दोष होता है। तो जैसे मान लीजिए कभी कभी आप शर्ट वगैरह निकालते हैं, कुर्ता निकालते हैं, तो कभी कभी उसके साथ हमारा जनेऊ भी बाहर हो जाता है, तो उस समय भी वो जनेऊ को वैसे पहन लीजिए, लेकिन उसके बाद जैसे रात में अगर ऐसा हो गया तो सुबह पहले जा करके उपनयन बदल करके फिर उसके बाद में विधि विधान करनी चाहिए। यानी किसी भी परिस्थिति में दोष अगर आते हैं तो पहले उसको शुद्ध करके जनेऊ, जैसे शमशान भूमि में या कहीं शमशान घाट यदि हम जाते हैं तो उस समय भी जो जनेऊ होता है उसको बदल देना चाहिए। वहां पर जाकर के अगर आप गए हैं तो जब रिटर्न आएंगे तो पहले पूरा स्नान कर लीजिए, और ऐसा नहीं कि आप उसको पहले निकाल दीजिए, केवल उसको पहने रहिए, लेकिन उसके बाद नए जनेऊ को धारण करके मंत्र विधि करके फिर पुराने जनेऊ को निकाल करके उसे विसर्जन कर दीजिए। तो इस प्रकार से ये शुद्धि का विषय है और उसको अच्छे से पालन करना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, ये सब्जेक्ट मेरा छूट गया था, अच्छा वो आपसे कवर हो गया, धन्यवाद।
दूसरा प्रश्न है कि यदि हमने बच्चों के बचपन में कोई संस्कार नहीं कराए तो डायरेक्ट के उपनयन संस्कार करा सकते हैं?
हाँ, ऐसा विधि है। अगर मान लीजिए किसी बालक का बचपन में कोई संस्कार नहीं हुआ है तो जब उपनयन संस्कार करते हैं तो उसका जात कर्म से लेकर के, मैंने जो भी संस्कार आपको बताया ना, जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, ये सारे कर्ण भेदन संस्कार, ये सारे संस्कार पहले कराए जाते हैं, और ये संस्कार करने के बाद ये जो तीसरा स्लाइड था वो अब भी लोड हुआ है, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, फिर मैं इसको निकाल देता हूं। तो मैं बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए बालक का जो जन्म है उसमें उसका संस्कार नहीं हुआ, तो जन्म के बाद अगर हमको उसको यज्ञ पवित्र संस्कार डायरेक्टली कराना है तो उसके पहले सारे संस्कार करा करके उसी समय यज्ञ के समय ही सारे संस्कार करा करके और फिर ये उपनयन संस्कार कराया जाता है, ठीक है।
दूसरा प्रश्न पूछ सके कि जैसे स्कॉन में जो हमारे गुरुवर हैं वो हमें मलिच्छ वाली परिस्थिति से, शूद्र वाली परिस्थिति से उठाकर ब्राह्मण बना रहे हैं, तो क्या ब्राह्मण इनिशिएटेड डिवोटी की जो संतान है उन्हें भी ब्राह्मण कहा जाएगा?
नहीं ना, मैंने उसका उदाहरण तो मैंने बहुत पहले दिया था कि यदि आपका आप ब्राह्मण हो, जैसे मैं अपने कुल से ब्राह्मण हूँ, तो मैं जन्म से ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं तो ब्राह्मण के कुल में मेरा जन्म हुआ है, लेकिन वास्तव में मैं ब्राह्मण तब होऊंगा जब मेरे संस्कार कराए जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए कोई इस्कॉन संस्था में आ जाते हैं, भक्ति करते हैं, भक्ति के विषय में सीखने लगते हैं, लेकिन अब वो उनके माता पिता का उपनयन संस्कार हो गया तो क्या वो ब्राह्मण हो गए? नहीं, उनका भी आप संस्कार कराइए तो वो ब्राह्मण होंगे। वैसे वो निश्चित रूप से शुद्ध ही है, क्योंकि उन्होंने ऐसे माता पिता का उनको प्राप्ति हुई है जो इतना शुद्ध जीवन जी रहे हैं, लेकिन उनके संस्कार के बिना वो ब्राह्मण नहीं कहे जाएंगे, ऐसा है।
किसी और का कोई प्रश्न है तो अपने हाथ रेज कर सकते हैं, मैं उनका माइक ऑन कर लूंगा। माता जी मैं खोल रहा हूँ।
हरे कृष्ण
माता जी,
आप हरे कृष्ण माता जी, आप बोल सकते हैं। जो फीमेल चाइल्ड है उनके लिए ये संस्कार किस प्रकार होते हैं, तो किस प्रकार से होते
हैं? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने काफी सारे सब्जेक्ट मेरे छूट गए थे क्योंकि मैंने इतना पढ़ लिया था कि उन विषयों के विषय में कहाँ चर्चा करना है कहाँ छोड़ना है वो मैं भूल गया था। तो आप लोगों का धन्यवाद, बहुत अच्छा अच्छा प्रश्न कर रहे हैं आप लोग, जिससे हमारा सब्जेक्ट पूरा हो रहा है। मेरे मन में ये आया था लेकिन मैं बताते बताते सोचा कि मैं आगे बताऊंगा, नहीं बता पाया, खैर इसका उत्तर देता हूं। स्त्री जो होती है उसका उपनयन संस्कार कराने का कोई विधान नहीं है। क्यों नहीं है इसका भी अर्थ दे देता हूं, क्योंकि स्त्री जो होती है वो रजस्वाला होती है। कब रजस्वाला होती है? जब वो 13 वर्ष से प्रारंभ होता है तब वो रजस्वाला होती है, उसको मासिक आता है, साइकिल आता है, तो जिस वजह से उसको जनेऊ नहीं दिया जाता और जीवन के हर समय में उसको बार बार उसका ये जो समय आ जाता है रजस्वाला का, तो वो अशुद्ध हो जाती है, तो जिस वजह से वो गायत्री मंत्र का उच्चारण कभी भी नहीं कर पाएगी, यानी चार पांच दिन तो वैसे भी वो नहीं कर पाएगी, और किसी न किसी कारणवश भी कभी कभी अशुद्ध हो जाती है, या कभी कभी घर में और भी अनेक अनेक प्रकार के इसमें दोष के लिस्ट हैं वैसे, तो स्त्रियों में इस प्रकार का कभी कभी दोष आ जाता है, तो दोष न दोष को बार बार आने की वजह से उनको शास्त्रों में जनेऊ नहीं दिया गया है। लेकिन जब स्त्री का विवाह होता है तो जिस पुरुष के साथ उसका विवाह होता है उसी पुरुष के साथ उसको जनेऊ तो नहीं दिया जाता, लेकिन उसी के नाम से उसका जो पति है या जो उसका वर है वो उसके नाम से और तीन धागा धारण करता है। तो पहले केवल तीन धागा पहनते हैं ब्रह्मचारी, और जब विवाह होता है तो फिर वापस से तीन धागा यानी छह धागा को धारण करते हैं। तो छह धागा क्यों है, क्योंकि वो तीन धागा पत्नी के नाम से पहनता है, अपने लिए नहीं पहनता है, पत्नी के लिए पहनता है। तो इसलिए तीन धागा ही ब्रह्मचारी के लिए है, जो गृहस्थ होते हैं उनके लिए छह धागा है। तो जो स्त्रियां जिनके लिए उपनयन संस्कार नहीं हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि उनका उपनयन संस्कार नहीं हुआ है, वे लोगों का उपनयन मान लिया जाता है जैसे ही विवाह हो जाता है। एक्चुअली ये भी कहा जाता है शास्त्रों में कि जो स्त्री का विवाह होता है वही उसका उपनयन संस्कार भी है, ऐसा भी है मान्यता है। ठीक है, तो इसलिए स्त्रियों को उपनयन तो नहीं दिया जाता, लेकिन उनका विवाह के समय ही उनका उपनयन मान लिया जाता है। ठीक है, हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। यस
हाँ, माता जी का वॉइस बंद हो गया।
ओके, माता जी का।
हाँ माता जी,
माता जी आपको प्रश्न है।
फिर बंद हो गया माइक।
एक मिनट प्रभु जी, मैं ऑन कर रहा
हूँ। अभी आ रही प्रभु जी आवाज मेरी?
जी
जी माता जी आ रही।
जो संस्कार है ये जो स्त्री होती है उसका शादी के दौरान होता है, जो उसके पति धारण करते हैं
जी,
और जो जैसे जो समापन संस्कार है जैसे प्रभुपाद की शिक्षाओं के अनुसार, तो जो एक फीमेल होती है घर में ही ट्रेनिंग होनी चाहिए कुकिंग और क्लीनिंग इन सब चीजों में, तो फिर उसका मतलब प्रभावित संस्कार भी नहीं होता, या वो भी विवाह के दौरान मतलब ग्रहण किया जाता है, क्या कहते
जी? जी एक्चुअली शास्त्रों में बताया गया है कि अन्नप्राशन ही लड़कियों का एंड हो जाता है, लड़कियां जो होती है जो स्त्री का जन्म होता है घर में तो उसका अन्नप्राशन ही लास्ट होता है, लेकिन स्त्रियों को शिक्षाएं दी जाती थी पहले वैदिक काल में भी दिया जाता था, तो इसलिए उनका विद्यारंभ संस्कार भी उनका कराया जाता है, या आज भी हम कर सकते हैं और हम करते भी हैं। लेकिन स्त्रियों का यह जो संस्कार होता है कर्ण भेदन चूड़ाकरण, यह मंत्रवत विधि नहीं होता, उनके लिए बिना मंत्र की विधि होती है। शास्त्रों ने बताया है कि उनके लिए मंत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बिना मंत्र के आप विधि कीजिए, और उपनयन संस्कार तो होता नहीं और समावर्तन संस्कार की आवश्यकता ही नहीं रहती, क्योंकि उपनयन के बाद ही समावर्तन की आवश्यकता होती है। तो इसलिए जो स्त्रियां होती हैं उनके अन्नप्राशन के बाद विद्यारंभ संस्कार कर सकते हैं, अगर वहां नहीं हुआ उपनयन के बाद विद्यारंभ संस्कार अगर नहीं भी हुआ है तो उनका डायरेक्ट विवाह संस्कार ही होता है। तो स्त्रियों के लिए पूरा 16 संस्कार कह पाना ये सही नहीं है, लेकिन ये भी आप ध्यान रखिए कि यदि वो जिस पुरुष के साथ उसका विवाह होता है जो उसके संस्कार हुए हैं, अभी हम तो पॉजिटिव वे में बात कर रहे हैं कि मान लीजिए एक पुरुष है जिसका पूरा संस्कार हो रहा है, तो जो स्त्री उसके साथ जब उसका विवाह होता है तो उस समय उसके भी सारे संस्कार मान लिए जाते हैं, तो वो उसी लाइन में उसके लिए भी कंप्लीट हो जाता है 16 संस्कार। ठीक है, तो इसलिए जो स्त्री होती है उसके 16 संस्कार पूरे नहीं है, लेकिन वो जिस पुरुष के साथ संस्कार करती है उसके आधार पर उसके सारे संस्कार मान लिए जाते हैं। ठीक है, तो उनका माइक फिर बंद हो गया। हरे कृष्णा
जी। प्रभु जी मैं हाँ थोड़ा
जी जी, और आपके कुछ प्रश्न है?
नहीं प्रभु जी, मेरा प्रश्न नहीं।
ठीक है, धन्यवाद।
प्रभु जी
हाँ बोलिए।
एक प्रश्न और आया, स्त्रियों को जो ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है तो उसकी क्या प्रक्रिया है?
हाँ, तो स्त्रियों को जो हमारे इस्कॉन में या हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवन अमृत संघ इस्कॉन में जो ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है तो वो उनको जनेऊ नहीं दिया जाता है, वो जनेऊ नहीं पहनते हैं, वे लोग अपने जो साड़ी का ऐसा पल्लू होता है इसी को वो लोग ऐसे अंगूठे में तीन बार लपेट करके और फिर गायत्री जप करते हैं। तो उनके लिए गायत्री ये केवल केवल और केवल प्रभुपाद जी का आशीर्वाद है, क्योंकि शास्त्रों में इसकी कोई व्याख्या नहीं है ज्यादा स्त्रियों को गायत्री देना चाहिए, वेद में मैंने एक स्थान पर पढ़ा है कि पहले बहुत पहले वैदिक काल में स्त्रियों को भी गायत्री दी जाती थी, लेकिन उसका क्या नियम है, क्या सिस्टम है, इसके विचार पे कोई चर्चा नहीं है और ना ही उसके विषय में ज्यादा प्रमाण है, तो इसके लिए उस विषय पे मैंने हम चर्चा नहीं करते। और आजकल के जितने भी आचार्य हैं, जो भी बड़े बड़े गुरु हैं, उन सभी का यही कहना है कि स्त्रियों को किसी भी आधार पर गायत्री नहीं दी जाती। लेकिन हमारे इस्कॉन संस्था में केवल और केवल श्री प्रभुपाद जी का आशीर्वाद है, इसलिए स्त्रियों को गायत्री करने का विधान दिया गया है, अन्यथा स्त्रियों को गायत्री का कोई विधान नहीं है, ऐसा शास्त्रों का मत है। लेकिन ये केवल प्रभुपाद जी का आशीर्वाद है, तो उस आशीर्वाद को लेकर के जो भी माताएं दीक्षा और ब्राह्मण दीक्षा ग्रहण करती है, वे प्रभुपाद के वास्तविक रूप से उनको ज्यादा ऋणी माना जा सकता है, क्योंकि केवल उनके ही कृपा से उनको गायत्री मंत्र जप करने का विधान बताया गया है। तो उनके लिए भी कुछ नियम होते हैं, और गायत्री मंत्र जप करने के एक नियम होते हैं कि सुबह 6 से 8, दोपहर 12 से 2 और रात को 6 से 8, यानी दिन में 3 बार गायत्री जप किया जाता है, और 7 मंत्र जो गुरु आचार्य के द्वारा दिया जाता है उसी मंत्र का वो जप करती है। तो वो अपने रजो दर्शन के समय नहीं जप करते, उसको छोड़ देते हैं, और जब वे बाल धो लेती हैं, शुद्ध हो जाती हैं, तो उसके बाद वापस से एक्टिव हो जाती है मंत्र, वो फिर जप करते हैं। ठीक है
जी, एक प्रश्न और है कि प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि माता पिता हमारे लिए पूजनीय होने चाहिए, तो प्रश्न है कि यदि माता पिता भगवान के समान पूजनीय है, तो कई बार माता पिता गुरु की शिक्षाओं के बीच में आ जाते हैं, तो इस परिस्थिति में माता पिता से कैसे डील करना चाहिए?
ठीक है,
उनका अपमान ना हो।
हाँ, सही बात है। देखिये, कैसा होता है, माँ पिता सदैव देव पूज है, तो वो किसी भी आधार पे हमारे लिए पूजनीय है। लेकिन कैसी बातें हैं कि हमें धर्म का जब पालन करने के लिए कोई, यदि हमारा गुरु हो, कोई भी हो, तो उसका हमें उसका उस समय उसके बारे में ये नहीं सोचना है कि यही जो कह रहा वही सही है, ऐसा नहीं है। लेकिन धर्म का पालन करने का भी अर्थ ये नहीं है कि आप उनको डायरेक्ट अवहेलना कर दो, उनको पूरा रूप से निग्लेक्ट कर दो, ऐसा भी नहीं। तो उनको सहमति से समझाना चाहिए, नहीं समझते नहीं। आप देखिए, पहले के जो माता पिता होते थे वो भी काफी धार्मिक होते थे, उनको भी शिक्षाएं ज्ञान सब प्राप्त हुआ होता था, इसलिए वो लोग कभी किसी को रोकते नहीं थे। लेकिन आज के समय हमारे माता पिताओं को ये शिक्षा ही नहीं मिली है कभी जीवन में, तो इसलिए वो हमें धर्म के लिए रोकते हैं। तो उस समय हम उनको थोड़ा उनके आगे जाकर के हम धर्म का पालन करते हैं। और ये भी एक अनुभव देखा गया है कि जब उन्हीं माता पिताओं को जब ये दिखाई देता है कि हमारा बच्चा, हमारा बालक जो है या हमारी बेटी जो है, वो धर्म का अच्छे से पालन कर रहे हैं, तो वो लोग भी उसको छूट दे देते हैं। तो उस समय भले उनका अपमान होता है, मतलब एक तरह से अपमान होता है, लेकिन उस अपमान को अपमान तभी कंसिडर किया जा सकता है जब आपने केवल उनको त्याग दिया, धर्म का पालन करते करते उनका पूरा ही त्याग कर दिया, तब वो उनका अपमान है। लेकिन अगर केवल धर्म का पालन करने के लिए उस समय के लिए उनको थोड़ा साइड रखा, उनका पालन किया, और फिर से आप उनकी और अच्छी सेवा कर रहे हैं, तो इसको धर्म कहते हैं। तो इसलिए जो लोग माता पिता का अपमान करना, यानी ये अपमान नहीं है कि वो धर्म किसे अगर रोक रहे हैं, उनकी बातों को अगर नहीं मानना है, तो वो ठीक है, क्योंकि धर्म महान है, धर्म महत्वपूर्ण है। तो धर्म के आगे कोई भी आता है तो उसका वैल्यू शून्य है। लेकिन अगर वो बार बार रोक रहे हैं, उसको मंदिर जाने से बांध दे रहे हैं कि नहीं जाने दूंगा, उसे जप करने से उसका माला उठा के छीन के फेंक दे रहे हैं, तो उसको प्रसाद ही नहीं खाने दे रहे हैं, तो ये बात थोड़ी ज्यादा है। इसके विषय पे खैर पर्सनली चर्चा करना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जनरल स्टेटमेंट देना थोड़ा कठिन है, क्योंकि ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट चर्चा किया जा सकता है इस पर। ठीक है,
किसी और को कोई प्रश्न है तो हाथ उठा सकते, नहीं तो हम सेशन एंड करें। तो कल का प्रभु जैसे आपसे डिस्कस हुआ था कि क्लास थोड़ा सा लंबा जाएगा, क्योंकि कल आपने समावर्तन संस्कार और विवाह संस्कार के बारे में बताना है, और आप बता रहे थे कि सॉरी विवाह संस्कार और वानप्रस्थ संस्कार के बारे में बताना है, और आप बता रहे थे कि जो विवाह संस्कार है वो थोड़ा लंबा जाएगा।
हाँ।
तो कल का क्लास मॉर्निंग में ही रहेगा और लगभग 2 घंटे के आसपास क्लास चलेगा, 2-2.5 घंटे। तो मैं थोड़ी देर में ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, सभी के पास मैसेजेस पहुंच जाएंगे कि किस हिसाब से क्लास है। और रिकॉर्डिंग के लिए, जो रिकॉर्डिंग अभी तक हम 2